Welcome back to the 385th episode of Thought Behind Things. Today is the 24th of November 2023. Aaj hamare saath maujood hai Jihad Zafar, jo pehle bhi ek dafa show pe aa chuke hain, jab humne discussion ki thi on India-Pakistan, regional dynamics, geopolitics. Most recently, he's been actively covering the Israeli war on in Gaza, aur wo uske andar daily ki videos nikal rahe hain with fact checked verified information. Bahut interesting aur acha kaam kar rahe hain. Maine socha ki unse discussion ki jaye on geopolitics, war, economics and the changing world order, jo mera manna hai, as you'll get to know more during this episode as well, ke duniya mein ek system tabdeel ho raha hai, ek structure tabdeel ho raha hai, aur uske kuch certain signs or symptoms hame nazar aa rahe hain, aur a lot of the things that we're seeing, the polarization, the aggression within our country, within our region, but overall across the globe, chahe wo America ho, chahe wo Europe ho, chahe wo Asia ho, even Africa, humne usko bahut detail mein discuss kiya, understand kiya, ki ye changes kyun aa rahi hain, aur in changes ko maddenazar rakhte hue aane wale waqt mein hum thoda sa agar project kar sakein, predict kar sakein ki situation kis taraf jayegi, to usko bhi humne aaj ek core focus mein rakha. Before we go further, kyunki is tarah ke mamlaat bade sensitive hote hain aajkal ki timeline ke andar, to I just want to give a disclaimer ki ek purely analytical डिस्कशन है. हमने कोशिश तो पूरी की है एंड आई होप इट कम्स ऑफ दैट वे एज वेल, कि हम कहीं पे ये डिफाइन ना करें कौन अच्छा है और कौन बुरा है. हम प्योरली एक एनालाइज करें कि डिफरेंट लोग, उनके पोटेंशियली इंटरेस्ट क्या हैं, थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, और उन थॉट प्रोसेसेस को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्त में क्या आउटकम्स हम पोटेंशियली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. अगर आपके कोई थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएं. आई रीड ऑल ऑफ द कमेंट्स एंड इट रियली हेल्प्स मी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कॉन्वर्जेशन. ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन हेल्प सपोर्ट द चैनल बाई फॉलोइंग द स्ट्राइप लिंक डाउन बिलो. इट विल हेल्प अस रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. बट एनीवेज, हियर इज जिहाद जफर ऑन TBT गो लाहौर स्टूडियो. जियाद भाई कैसे हैं?
सर बेहतरीन. बहुत खुशी हुई आपको लाहौर में देख के.
बहुत खुशी हुई आपको TBT पे दोबारा देख के.
यस, दो साल बाद हम बैठे हैं.
बिल्कुल ऐसा ही है.
सेशन पहले इस्लामाबाद में लगा था.
बिल्कुल ऐसा ही.
उस वक्त अमरीकी भाग रहे थे यहाँ से. अब वापस आने का सोच रहे.
ऐसे ही है, ऐसे ही है सर. हालात बड़े बदल गए. हमने सोचा कि आजकल आप जो है, आपकी बड़ी कड़ी नजर है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सियासत के बारे में बात करते रहते हैं. मैं जनरली, मैंने छोड़ दिया है सियासत के बारे में भी बात करना और सियासत के बारे में पढ़ना भी, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि जो रियल चेंज आ रहा है हमारी दुनिया में इस वक्त, वो जियोपॉलिटिकल ही है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वो चेंजेस जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तानियों को अगले 100 साल इम्पैक्ट करेंगे.
लिंक्ड हैं बिल्कुल.
तो मैंने सोचा कि उसके बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग लें. बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, पहले तो बताएं कि हाउ इज एवरीथिंग, व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ.
बहुत बहुत बिजी चल रही है लाइफ आजकल. थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कवरेज को ज़्यादा करें जो right. कुछ हो रहा है मिडल ईस्ट में, और न्यूज़ से रिलेटेड हमारा, और थोड़ा सा पॉडकास्ट वगैरह. तो यही right. है हमारी कंटेंट क्रिएशन पे गेम लगी हुई है. एक ही चीज़ को पकड़ा हुआ अभी तक हम उसको लगे हैं.
मेक सेंस. पहले आप थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल करते होते थे. हाँ. जिसमें जो है ना, आपका ये होता था कि सॉर्ट ऑफ बिग पिक्चर, बड़े लेवल की एक फलसफे को रिसर्च करके समझा.
यस.
अभी रिसेंटली जिसको मैं भी पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, मेरे दिल बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कि यू डूइंग मोर टाइम्ड कॉन्टेंट, जिस तरह पैलेस्टाइन इसराइल में, क्योंकि पाकिस्तानियों को वो इनसाइट नहीं है, हमारा मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा उस तरीके से. इंटरनेट के ऊपर बहुत हर किस्म की फेक न्यूज़ भी होती है, सारा कुछ होता है. तो आपका बड़ा रेगुलरली कंटेंट आ रहा है और बड़ा अच्छा कंटेंट आ रहा है. तो ये शिफ्ट किस तरह से आया और इसमें मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया इसमें?
सर अभी आप मेरी आंखें देख रहे हैं. मैं आज 9 बजे घर गया था
सुबह
एडिटिंग करके. तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, जैसे आपने कहा ना कि डेली. अब कोशिश यही है कि अब शायद ये डिमांड अब लोगों की ये बनती जा रही है कि थोड़ा सा ना ज़्यादा उनको कंटेंट मिले. हाँ. तो उसकी वजह से फिर ये है कि हैपनिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं. मतलब एक तो आपका ये चल रहा है मिडल ईस्ट में, इसराइल पैलेस्टाइन, उसके अलावा इतनी चीज़ें लोकली चल रही होती हैं, फिर चाइना, अमेरिका, रूस वगैरह, यूरोप में क्या चल रहा है. लेकिन अभी जो एक ये टॉपिक है उससे रिलेटेड, और फिर थोड़ी सी वो, तो वो इसलिए आजकल ना मैंने ये सोचा कि उस थोड़ा सा उसको किया जाए, थोड़ा क्विक क्विक वीडियोस की तरफ जाया जाए और डेली अपलोड की तरफ और बहुत से लोग कहते हैं कि इस पे करना चाहिए ये,
तो एल्गोरिथम वगैरह भी आपको सपोर्ट करता है, लोग भी पसंद करते हैं कि यार जिसने एक आदत सी है, कुछ कुछ लोग हैं, मैं मोहित पीरज़ादा को देखता हूँ और दो तीन लोगों को देखता हूँ, तो वो आप एक जाते हो, आप जाके उसको 2x पे लगा करके ना एक डेली अपडेट ले लेते हो कि क्या चल रहा है।
हाँ, तो आजकल हालात भी ऐसे बने हुए ना कि वो डेली अपडेट वाले हालात बने हुए हैं कि बस आपने बताना है लोगों को। तो अब मेरा जो ये सीन है कि हमारा लगाओ इस फील्ड से इतना ज़्यादा है कि मेरी अब ज़िंदगी में अगर 10 घंटे लगते हैं मतलब एक कंटेंट पीस तैयार करने में, उसके अलावा जो 8 घंटे हैं जो मैंने जागने हैं उसमें भी हम उठते बैठते वो ट्विटर को देख रहे हैं, 10-12 रेफरेंसेस अपने आप को ही वो मैसेजेस कर देते हैं व्हाट्सएप पे कि वो एक रहे आपके पास रिकॉर्ड में, ताकि आप जब नया स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो तो वो आपके पास आ जाए। तो आजकल थोड़ा वो हाइपर एक्टिव मोड की तरफ हम आए हैं कि जी बस करना है, क्योंकि इवेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो और ये डिमांड, आई थिंक ये जो सिचुएशन चल रही है उसकी ये डिमांड है कि ज़्यादा आप कवर।
एग्जॉस्टिंग नहीं हो जाता?
बहुत ज़्यादा है,
बिकॉज ये इसमें कहीं ना कहीं कोई सस्टेनेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे लगता है कि अच्छा इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि आप दो वीडियोस निकाल रहे हैं दिन की, एक निकाल रहे हैं
एक और फेसबुक पे दो, फेसबुक पे थोड़ा सा वो कुछ
आई मीन दैट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट राइट, और वो अगर आपने रिसर्च्ड वेरीफाइड कंटेंट करना है तो बड़ा वो है।
फेसबुक पे एक चली जाती है विदाउट रिसर्च।
अच्छा, एक फिलिप डीफ्रैंको का मॉडल देखा है आपने?
यस बिल्कुल,
राइट, कोई तकरीबन 8 साल से वो साहब कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया।
डेली वो
मंडे टू फ्राइडे करते हैं,
मंडे टू फ्राइडे वो 5-6 न्यूज कवर करते हैं एक वीडियो के अंदर।
हाँ, तो मुझे कम से कम उनको देख के ये तो सेंस आती है कि ये किया तो जा सकता है,
किया जा सकता है,
देयर इज अ फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, वो सारा कुछ करके वो मैनेज कर रहा है।
बिल्कुल।
अब लेकिन जब सारे आप स्टार्ट करते हैं तो आपने वो स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें फिर वो एक्स्ट्रा टाइम लगता ही लगता है
सर, वो एफर्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एक वही बात है ना कि एक डिमांड इस वक्त हालात, मतलब आप 2 दिन वेट नहीं कर सकते।
हाँ।
क्योंकि पहले था मतलब ये एटीट्यूड के जी कर लेंगे आराम से रिसर्च करके, रिसर्च भी चल रही है।
हाँ।
वो रिसर्च हो रही है तो इतनी ज़्यादा वो थकावट भी आ रही है कि उसको भी हम वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता वो रिसर्च वाले एंगल को, कि कुछ हम कुछ दें, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ दें लोगों को,
रेलिवेंट चीज़ दें,
रेलिवेंट और कोई
वेरीफाइड
चीज़ दें, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना
राइट,
और साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को भी ज़्यादा करना है।
हाँ।
तो ये इसके लिए वही आपकी बात है, थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा चाहिए।
मेक सेंस। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है, अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आए वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं, और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है sarmaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट सरमाया फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग यू नो रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है, और खासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहां पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं। सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स। नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। जो दूसरा पहलू मैं कह रहा था वो थोड़ा ह्यूमन पहलू है।
हाँ हाँ।
मैं जनरली क्योंकि मैं इस तरह के मोमेंट्स होते हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ और मुझसे मैनेज नहीं होता कि मैं जिन चीज़ों के बारे में इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ ना, मुझसे उनके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं वो हूँ जो कि इमोशंस को ना सप्रेस करके डब्बे में डाल के साइड पर रखता है। जब मैं उसको ऑब्जेक्टिव हो जाता हूँ फिर मैं बात कर लेता हूँ। माय वाइफ इज़ वेरी एक्टिवली टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग, और मैं देख रहा हूँ कि यू नो शी बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज देन पीपल आर सेइंग कि जी थैंक यू आप हमें कर रहे हैं, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब वो फिर सुबह शाम पढ़ रही हैं, सुबह शाम देख रही हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव हियर। एज ह्यूमन बीइंग्स लोगों के लिए तो ये होता है ना कि यार आप तो एक दरमियान में एक नोड हैं जो कि अपना एक रोल कर रहे हैं कि यार मैंने चीज़ें देखी, मैंने कंज्यूम की और मैंने आपको आके सिंपल तरीके से बता दी। बट जब आप कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, जो खासकर जो फलस्तीन में हो रहा है इस टाइम के ऊपर सर, वो कहीं आपका दिल दहल जाता है।
नहीं सर वो तो,
और जब आप ट्विटर पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं,
शदीद डिप्रेशन की तरफ। आप जब रात को जब आप सोते हुए जब आप कंटेंट कहते हो मैं इकट्ठा करूं,
हाँ।
तो वो सोने से पहले वो एक अलग डिप्रेशन है कि आप बच्चों की वीडियोस देख रहे हो। हाँ। जो कुछ हो रहा है वो टोटली इनह्यूमन और बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती वो चीज़ें।
और जो आपकी दुनिया के बारे में आपकी जो सेंस थी ना, जो रियलिटी हमने ग्रोइंग अप बनाई थी कि एक्चुअली दुनिया ऐसी होती है, एक्चुअली ये मॉरल्स होते हैं, ये एथिक्स होते हैं, वो सब ब्रेक हो चुके हैं,
सब ब्रेक हो चुके
हैं, पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो चुकी हुई है। तो वो जो वो चीज़ है वो टोल लेती है आपको, आपके ऊपर?
बिल्कुल, उसका होता तो है, बंदा सोचता है कि यार ये क्या सोचा था और क्या हो गया ये। मतलब ये चीज़ तो रहती है कि इंसान वो पूरा करते हुए वो सोच रहा होता है यार ये नहीं मैंने सोचा था कि जब मैं ये शुरू कर रहा था कि इस तरह का इनजस्टिस होगा। वो डेफिनेटली आपकी बात सही है कि वो आप आती है, उसको आपको इम्पैक्ट करती है।
हाउ डू यू डील विद दैट? आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद माय वाइफ यस्टरडे। शी वाज़ लाइक यार मैं करना भी चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ मैं बंद कर दूँ दरवाजे, और मैं अपने मेंटल हेल्थ के लिए, मैं एक चीज़ हो रही है, मैं चाहती हूँ कि लोगों को उसके बारे में पता लगे, लेकिन मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट है, पब्लिक के लिए भी डिफिकल्ट है। तो मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाऊँ जिसके तहत मैं आई एम एबल टू डील विद इट इन अ मच मोर बेटर वे। सो आपके केस में, जिसना फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू डील विद द कांस्टेंट स्ट्रेस एंड द इमोशनल, जिसे कह सकते हैं रोलर कोस्टर, जिसमें व्हेन यू आर कंज्यूमिंग ऑल ऑफ दिस एंड यू आर यू नो सीइंग
ऑल दिस। एक चीज तो मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट जब भी आप कर रहे होते हो तो एक तो ये एक फीलिंग आती है कि लॉस्ट हो जाता है इंसान ना, कि कम्प्लीटली मतलब थोड़ा सा उसके जो रिश्ते हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। कभी आप किसी बहन को नहीं टाइम दे रहे, कभी आप अपनी पार्टनर को नहीं टाइम दे रहे, कभी आप अपनी वालदा को नहीं टाइम। तो ये चीज़ एक तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है,
राइट।
और उसके अलावा आपकी जो आपने वो मेंटल की बात की, मेंटल हेल्थ की, वो भी वो थोड़ी सी तो होती है लेकिन करना पड़ता है। फिर जब बंदा सोचता है ना कि यार इतने इनजस्टिसेस हो रहे हैं तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, फिर बंदा इस तरह करके अपने आप को थोड़ा सा दिलासा दे देता है कि चीज़ें मतलब हो जाएंगी मैनेज,
हम अपनी एफर्ट जो कर सकते हैं
वो तो करें, हम अपनी एफर्ट करते हैं वो तो करें ना। लेकिन ये कि जब बाकी बंदा अपने मुल्क के हालात भी देखता है और जो ग्लोबली भी, फिर इंसान वही इनजस्टिस का वो यही जहन में आता है कि जो 2-3 साल पहले हम जो सोचते थे दुनिया, कि वो बिल्कुल वो डिफरेंट है। वो इनजस्टिस का लेवल,
और एक लॉस का एहसास होता है ना, एक लॉस का एहसास होता है।
हाँ, कि एक बड़ा एक नुकसान, जैसे
जो हम बिलीव करते थे अब उस बिलीव पे वापस नहीं जा सकते,
नहीं जा सकते,
तो वो नई रियलिटी, उस चीज को करना, उसको रिकनसाइल करना, वो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही होते हो कि चलो ठीक है, मैं अब इस नई रियलिटी में सोच लेता हूँ, कर लेता हूँ।
हाँ, वो ऐसी होती है फीलिंग बाज़ुकात की, यार ठीक है अब दिस इज़ द न्यू नॉर्म, इसी के साथ चलना है।
हाँ, अब हम भी बहके चले जाते हैं,
हम भी बहके, लेकिन ये कि दिल, भारी दिल के साथ,
भारी दिल के साथ,
ये इसमें एक फैक्ट है जो लोगों को तो नहीं नजर आ सकता, बट बहुत भारी दिल होता है कि जब बंदा देखता है कि ये तो रियलिटी कुछ और है।
हाँ।
तो वो फिर अंदर खाते वो जो वो इंसान ही एक्सपीरियंस कर रहा होता है।
हाँ।
कि यार ये चीज थी यार, ये इतनी बुरी हो सकती थी, ये तो नहीं मैंने सोचा था।
हाँ।
तो ये ऐसा,
और वो आई फील लाइक शायद हमारे बड़ों ने भी देखा था। हाँ। अब हमारी जनरेशन को ना समझ आई,
समझ आई,
इसलिए हमारे बड़े बड़े ठहराव के साथ होते थे।
हाँ।
हम बड़े इमोशनल हो रहे होते थे,
हमारी जनरेशन ये समझती थी कि जी हमने वो वॉर ऑन टेरर वाला टाइम देख लिया, इनफ।
हाँ।
बहुत है।
हाँ।
हमने वो दौर की वो,
हम तो बड़े सियाने, हमें तो दुनिया के बारे में बहुत पता है,
हमने तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी देख लिया हुआ है, कोविड भी देख लिया हुआ है, अब एवरीथिंग इज ओके। लेकिन ये जो 2000 ये पिछली, ये अभी जो कुछ हो रहा है दुनिया में और जो कुछ हमारे मुल्क में भी जो कुछ इवन हुआ, तो वो इंसान कहता है ये तो मतलब ये सिलसिला भी चल रहा है।
हाँ।
ये अभी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई हमारी
100%। व्हाई डू यू थिंक, अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जाऊं, ठीक है, दुनिया एक अजीब ही हो गई है ना यार, मतलब फाइनेंशियली। मैं पिछले दिनों मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं रिलोकेट करता हूँ, जरा बाहर जाता हूँ, ग्रोथ के लिए फिगर आउट करता हूँ ये। yes. वो तो मेरी डिफरेंट लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा दुबई क्यों गए, इंग्लैंड क्यों नहीं गए, अमेरिका क्यों नहीं गए। तो मैं बात जब कर ही रहा था, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे आप एक बात बताएं, मैं अगर पैसों के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहा होता, दुबई इस वक्त इंतहा ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ है, यूरोप रिसेशन में अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है,
नहीं वो, हाँ बिल्कुल, तो उनका डेट सीलिंग आप देख लें यूएस,
एग्जैक्टली,
और यूरोप में जंग लगी हुई है,
एग्जैक्टली। तो पूरी दुनिया ही अजीब हुई है। मैं कहता हूँ कि ये क्या वजह है कि लाइक व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं, इफ आई वर टू आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड जिसकी वजह से सडनली एवर सिंस कोविड, उससे पहले ठीक है बाय एंड लार्ज चीजें होती थी, बट एक जिंदगी चल रही थी, एक दुनिया चल रही थी। कोविड के बाद से इट हैज जस्ट बिन वन आफ्टर द अदर, और उसके बाद फिर वो यूक्रेन वॉर हो गई, फिर यूक्रेन वॉर में हमने कहा चलो यार फार अवे कोई लैंड में वॉर हो गई,
दूर हो रही है, एक लिमिटेड रीजन में हो रही है, हम तो ये अपने आप को दिलासा ही दे जा रहे
हैं। फिर वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते
हमारे मुल्क में एक खाना जंगी वाला माहौल पैदा हुआ है, वो बड़ी, हमारे मुल्क में बहुत चीजें हुई हैं, अनबिलीवेबल चीजें हुई हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी।
तो ये सारा व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन, इफ यू टू मेक सेंस ऑफ इट?
यार इसमें इसमें बहुत सी अजीब चीज़ें हुई हैं कि कोविड के बाद ना बहुत से बिहेवियर्स चेंज हुए हैं, और इसमें बहुत सी कॉन्स्परेसीज भी आ जाती हैं कि जी कोई ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट का एक पार्ट था जो कि वो चाहते थे कि जी दुनिया को हमने इस तरह से चलाना है।
सही है,
क्योंकि पहले आप देख रहे थे एक एक लीनियर जा रही थी जिसमें आप एक वो कल्चर जिसमें वो कह रहा था पनप रहा था फेमिनिस्ट मूवमेंट और मी टू चल रहा था, वो उस शुगल में दुनिया जा रही थी और वो जी सब कुछ हो रहा है और इवेंट्स हो रहे हैं। वो कोविड में एक ब्रेक आया और उस ब्रेक के बाद लोगों को ना एक क्रिटिकल थिंकिंग का मौका भी मिला। तो उसके बाद हमने देखा है कि एक दो क्लियर सोचें खुलकर सामने आ गई, जो पहले सोच प्रिवेल कर रही थी ना वो उसको एक
हिट पड़ी है,
हिट पड़ी है दूसरी तरफ से। और वो उनको मैं ये भी कहूंगा कि वो थोड़े वो जो कंजर्वेटिव्स थे वो ज्यादा उनका राइज हुआ है कोविड के बाद।
राइट,
वो बहुत से लोगों ने सोचा और बहुत से जो कन्वर्ट भी हुए, लिबरल से लोग कंजर्वेटिव भी बने घर बैठे। फिर जब सारा उन्होंने देखा और ये फिर ऐसी चीजें हुई, फिर वही ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट की पुश वाली बात ना, वो मतलब वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि अब ये जंग शुरू हो गई यूरोप में और उसके बाद आप देख लें पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, अब इसराइल में वो कुछ हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि कहीं
कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ
कनेक्टेड है और कहीं से पुशबैक आ रहा है कि कोई दुनिया का कोई पार्ट, कहीं लोग बैठे हैं जो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे और वो दुनिया में एक कैओस चाहते हैं ताकि वापस ऑर्डर को रीगेन किया जाए, ऐसा लगता है।
डू यू थिंक ऑर्डर रीगेन होगा? दो
नहीं होगा,
मेरा जाते ख्याल ये नहीं होगा। मेरे से ऑनेस्टली पूछे ना, इवन दो मुझे सामने जो 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 फ्रंट पे चीजें नजर आ रही है ना वो मुझे कुछ और कह रही है, लेकिन अगर मैं जितना डेटा को देख रहा हूँ ना तो मुझे एवोल्यूशन होती है नजर आ रही है कि एक साइकिल है। ये लास्ट डिच एफर्ट है, एक्चुअली द वर्ड दैट आई यूज इज दिस इज द लास्ट डिच एफर्ट,
बिल्कुल,
टू ट्राई टू, जो आपने बड़े अच्छे से बोला कि टू ट्राई टू कीप कंट्रोल एंड कीप द ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट इंटैक्ट, बट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड इवन इफ इट डज इट्स नॉट अपेरेंट, वो टाइम विल प्रूव कि वो नई एस्टैब्लिशमेंट राइज करेगी।
बिल्कुल, आप इनके नैरेटिव में भी देख लेना, अब वो नैरेटिव में जो यूएस से बात आती है वो डिटो वो छापने की कोशिश करते हैं कनाडा, यूके, यूरोपीय यूनियन और ये चंद ममालिक, वो एक ही स्क्रिप्ट आता है, एक ही लाइन बोली जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, कि पहले होता था कि यार यूके के प्राइम मिनिस्टर के चलो अपनी एक से होती थी, ईयू वाली की अपनी होती थी। अब जो लोग बैठे हैं तो सॉरी टू से, अब हम क्या,
बाय द वे कॉम्पिटेंस पे भी मैं कहूंगा कि अब बहुत ही इनको, यार आप देखिए
वो लोग लगाए ही ऐसे जा रहे हैं कि वो बस स्क्रिप्ट ही पढ़े। ये हम ऐसे साउंड कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट हम देख रहे हैं कि यार आप डेविड कैमरॉन को देख लें, ठीक है उसने इराक जंग वेज सब कुछ उसने किया, बगैरतियां उसने भी घोली, लेकिन वो पपेट साउंड नहीं करते थे, अपनी थिंकिंग थी। आजकल जो लोग बैठे हैं वो क्या लोग हैं
यार, आप इवन आप इसराइल की जो ट्वीट्स आ रही हैं, इसराइल के जो स्पोक्स पर्सन बातें कर रहे हैं, वो तो लग रहा है अपने पांव पे कुल्हाड़े मार रहे हैं बैठे कि वो इतनी स्टूपिड बातें कर रहे हैं। अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कहूं बातें, जाहिर है वो सच बोल रहे हैं फाइनली आके, ठीक है, लेकिन वो अगर मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में लेकर आऊं तो वो There is a reason why the global establishment or the global population is flipping, क्योंकि अब उनको नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपने ट्विटर पे आके मीम्स डाल रहे
हैं,
अपने ट्विटर पे कह रहे हैं कि सब, और उनकी वीडियोस आ रही हैं कि जी हम सबको मार देंगे, कोई मसला नहीं है, आके तो दिखाओ। तो आपको थोड़ा सा होता है कि यार या तो ये लोग साइको हो गए हैं अब, कि इनको अब सेंस ही नहीं है इनका, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला कभी कभार आपको एरोगेंस में पर्दे डाल देता है, या तो पर्दे आ गए उनको वाकई ही लगता है हम अनटचेबल है, बट देयर इज अ चेंज एटलीस्ट, खासकर जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आपने उसकी बात की कंस्पिरेसी थ्योरी की, क्योंकि जब इस तरह के केओटिक टाइम्स आते हैं ना तो देन पीपल टेंड टू गो टुवर्ड्स कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी। अभी
तो लोग इंस्टा पे आप जाएं तो लोगों ने स्टोरीज लगाई होती हैं कि क्यामत आ रही है, दुआएं पढ़ लो। वो अपनी जगह वो सोच रहे हैं, हम अभी वो बात नहीं कह रहे, हम तो अभी जियोपॉलिटिकल एंगल की कॉन्स्पिरेसीज, वो तो क्यामत तक कई लोग पहुंच गए हैं, हमें नहीं पता उसका, जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो प्योरली जियोपॉलिटिकल एंगल से कर रहे हैं। हमारा तो उसमें
वो है ना कि आप यू एट लीस्ट ट्राई टू टेक द डेटा पॉइंट्स एंड ट्राई टू सी कि यार यहां पे कोई कनेक्शंस हैं,
कोई कनेक्शंस हैं, क्या हो रहा है, पैटर्न हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पैटर्न है, कनेक्टेड पैटर्न, वो हम अभी आपने इसराइल की बात की, क्या
किस तरीके से वो जो है बहुत स्टूपिड ट्वीट्स कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, बट मुझे मैं वो जनरली कह रहा था कि इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट में ना दिस टाइम अराउंड द पुशबैक इज मच हायर
हायर
देर इज अ क्लियर डिफरेंस. इतना आसान नहीं है रहा वो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो गेम खेलना जो कि वो हमेशा से खेलते आए हैं कि जी हम आएंगे. अब उस पर बड़े लोग फॉल्स फ्लैग भी कह रहे हैं कि जी बहुत कुछ और कह रहे हैं, बट वो जो है हम आएंगे हम घुसेंगे. और वो जो इसराइल का इंटेलिजेंस की डॉक्यूमेंट आई है जिसमें वो कह रहे थे कि जी गाजा के लोगों को हम जो है वो इजिप्ट भेज देंगे, वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन भेज देंगे, टेक ओवर कर लेंगे, वो प्लान इतने आसानी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि प्रोटेस्ट जो इस वक्त हो रही है वेस्ट में
लंदन में,
लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, इस्तांबुल में, स्पेन में, कहाँ कहाँ हो रही है,
कहाँ कहाँ.
और जो ऑनलाइन इस बार पुशबैक आया है
मैसिव
अनप्रेसिडेंटेड रहा है.
और एक्स में वो थोड़ा सा इसका क्रेडिट इलॉन मस्क को भी जाएगा 100% कि उन्होंने जिस तरह जो फ्री स्पीच की वो बात कर रहे हैं
वो वैलिडेट हुई है,
वो हो रही है कि लोग बोल रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं खुल के.
हाँ.
वो एक जैक्सन कोई है, जैक्सन हिंकल समथिंग.
हाँ, 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 हाँ.
वो यूएस का, उसको यूट्यूब वगैरह ने सबने बैन किया है.
हाँ, हाँ.
वो क्योंकि उसका रशिया यूक्रेन में भी यूएस एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट था स्टैंड, और अब भी उसका वो इसराइलियों को लताड़ है लेकिन वो एक्स पे लगा हुआ है.
ये भी आप देखे ना कि मुझे जो आपके हम बात कर रहे हैं ना कि आईसीएस आपकी आंखें खुलती हैं कि अगर आप यूएस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएंगे. हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान में जी एक एस्टेब्लिशमेंट होती है, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते वगैरह वगैरह. अब हमने देखा कि जी आप यूएस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं वो आपको यूट्यूब से ही बैन कर देंगे.
अबे हमें
वो फ्री स्पीच के दावेदार जो
हमें दो एस्टेब्लिशमेंटों से बच के चलना पड़ता है, लोकल और ग्लोबल. हमारी जिंदगी तो बहुत मुश्किल है.
सही बात है ना, मतलब हमें लगता था जी पाकिस्तान से निकलो और अब जी फ्री स्पीच
नो फ्री स्पीच,
नो फ्री स्पीच भाई.
आप देखें कल मैं देख रहा था यूके का कोई एमपी था, उसको वो किसी कैबिनेट का पार्ट था, उसको उड़ा दिया कि उसने कहा कि सीज फायर होना चाहिए. इस टाइम आपकी पूरी वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट सीज फायर के पीछे पड़ गई है. वो कह रहे हैं कि जी सीज फायर नहीं होना चाहिए, क्या सीज फायर होगा तो इसका फायदा मास्क होगा.
हाँ.
मतलब सीज फायर के ही पीछे पड़ गए हैं वो, ओपनली कह रहे हैं. ये मैं देख रहा था वो व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल सिक्योरिटी के.
हाँ.
वो कह रहे थे कि जी सीज फायर करेंगे तो इसमें तो होंगी जाने जाएंगी. हाँ. होगा.
हम वो कह रहे हैं जी. हाँ. हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पॉज को करेंगे कि मतलब 12 घंटे के लिए बंदे. और वो अगेन वो पॉज भी सिर्फ इस वजह से चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि जी बंदा जो है ना वो बच के इजिप्ट निकले.
बिल्कुल.
ताकि मेरा जाती ख्याल ये, क्योंकि अगेन आफ्टर डॉक्यूमेंट फ्रॉम इसराइल इंटेलिजेंस आ गई हुई है आपके सामने जो कह रही है कि यार बंदों को वो नीचे निकालना चाहते हैं ताकि वो गाजा और वेस्ट बैंक को लैंड ग्रैब कर ले,
बिल्कुल ऑक्यूपाइड कर ले जैसे उन्होंने बाकी की भी है.
हाँ, बट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं इस रीजन को देखूं, आपको पोटेंशियली ये कॉन्फ्लिक्ट किधर जाता हुआ नजर आ रहा है?
मैं आपसे पहले ये सवाल पूछूंगा, हम इसको करेंगे. आपके ख्याल में इसराइल आपको इस पूरे क्राइसिस के बाद प्रिवेल करता हुआ नजर आ रहा है या स्ट्रगल करता हुआ?
मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है.
जी, मेरे भी यही ख्याल आते हैं.
मुझे इस बार प्रिवेल करता हुआ नहीं नजर आ रहा.
हाँ, बिल्कुल. पहले बोले
इट्स नॉट एज सिंपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग आर फ्लिपिंग. पियर्स मॉर्गन फ्लिप कर रहा है, वो सीएनएन का एंकर है
इस वक्त. कह लें आप न्यूज दुनिया में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है.
हाँ,
पियर्स मॉर्गन.
हाँ,
और उसने कल ट्वीट कर दिया इसराइल के खिलाफ
कि यार ये डिफेंसिबल नहीं है भैया, नहीं हो सकता.
आपने कैंप को, रेफ्यूजी कैंप को अटैक कर दिया.
हाँ,
तो इसको ये कौन डिफेंड कर सकता है?
हाँ,
मुझे आप पहले कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं बस मैं ये कहूंगा कि मुझे पर्सनली एक तो ये फ्लिप होता हुआ नजर आता है, दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा ना इसको वॉर गेम करूंगा. वॉर गेम में मतलब ये है कि मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि यार इसराइल का क्या इंटरेस्ट है, पैलेस्टीनियंस का क्या इंटरेस्ट है, हमास का क्या इंटरेस्ट है, इजिप्शियंस, जॉर्डेनियंस, लेबनीज, सीरियंस जो बॉर्डर में सारे लगते हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, और फिर उनका लार्ज क्या है. मुझे ये लगता है कि इसराइल का इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है कि हमने लोगों को पुश करना है इधर से नीचे और उधर से जॉर्डन में. इजिप्ट की इकोनॉमी तबाह हुई भी है.
बिल्कुल. जॉर्डन आईएमएफ से पैसे ले.
हाँ, लेबनान की इकोनॉमी तबाह हुई,
टोटल तबाह है.
ठीक है, इन दोनों इकोनॉमीज ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि इधर से 2 मिलियन बंदा और उधर से 4 मिलियन बंदा उनकी कंट्री में आए. उनको ख्याल रखना होता है भाई.
बिल्कुल बिल्कुल.
तो इस वजह से चाहे इवन दो इजिप्ट जो है अगर आप देखें तो उनका ना टू पुट इट इन अ वेरी नाइस वे, उनकी जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुई है वो बड़ी सिमिलर हुई है जो पाकिस्तान में हुई है.
पाकिस्तान
में अगर बहुत सिंपली करूँ, और उसमें जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे वो भी बड़े सिमिलर थे,
सिमिलर
ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट वाइज. ठीक है,
वहाँ भी एक उसके मतलब उनका फौजी जनरल था,
एक पहले फौजी जनरल था, फिर डेमोक्रेसी आई, वो डेमोक्रेसी बड़ी नेशनलिस्टिक किस्म की थी, वो लोगों को उठा रही थी, फिर एकदम से रिजीम चेंज हुआ,
फिर जनरल आया उसी का जो साथ होता था उसके,
और फिर उसके बाद जो पॉलिटिशियन था वो जेल चला गया, और फिर एवेंचुअली उसको उन्होंने मार दिया, और फिर वो एक एवोल्यूशन हुई, और फिर उसके बाद डील वगैरह उनको मिली. बट इवन विद दैट उनकी पब्लिक का इतना प्रेशर है कि वो इस वक्त कह रहे हैं कि नहीं, हम फैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, विच मीन्स के इसराइल, और साथ आप ये देखेंगे नतन्याहू जो है उसकी अप्रूवल रेटिंग इस वक्त बहुत बुरी है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होती नहीं है
मुल्क में,
अपने ही मुल्क में. तो जब इस किस्म का बंदा होता है ना तो वो साइको हरकतें करता है.
ये बड़ी आपने पॉइंट की बात की.
ठीक है, तो इसराइल इस वक्त इसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है. चूंकि इसराइल बढ़ा रहा है तो इसका आउटकम, अगर मैं कहूँ ना कि इस मामले को अगर हमने कूल डाउन करना है तो फिर तो यही है, वाहिद एक रास्ता बचता है कि ये पॉपुलेशन इजिप्ट अब्जॉर्ब करे और उधर से जॉर्डन अब्जॉर्ब करे. बट अगर वो दोनों की दोनों कंट्रीज अब्जॉर्ब करने के लिए नहीं है रेडी, दैट मीन्स कि फिर तो जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं. और चूंकि हम जेनोसाइड की तरफ देख रहे हैं तो फिर उसका रिएक्शन आएगा कहीं ना कहीं से. सो पहले स्टेप में मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट गाजा इज द स्टार्ट, दिस इज गोइंग टू एक्सपैंड. नसरुल्ला की स्टेटमेंट आ रही है ऑन फ्राइडे, आई डोंट नो ये पॉडकास्ट कब जाएगी, बट ट्राई करेंगे कि इसको हम जल्द से जल्द निकाल दें. बट वो स्टेटमेंट आ रही है, उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि अब जी हिजबुल्ला वाला फ्रंट खुल जाएगा. राइट, पर्सनली मुझे लगता है कि इसराइल ने अपना ओवर प्ले कर दिया है हैंड. और अब वो उस हेजेमनी को बरकरार नहीं रख सकेगा जिसको वो हिस्टोरिकली रखता रहा है. दैट्स माय थॉट.
आप उनके पैटर्न देखें ना ट्वीट्स के, वो कहते हैं कि ये हमने काम किया यूएस की मदद से. वो ना, वो इसराइल एक ऐसा बच्चा है जो हर बात पे कहता है कि देखो वो डैडी और वो यूएस मेरे साथ है, वो मेरे साथ खड़ा है. तो यहाँ पे यही बात है कि इनको ना मीडिया कवरेज से बड़ा डर लगता है इसराइल को, कि हमारी जो भी है इसराइलीज को यहाँ पे उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर इस तरह पैदा होता है कि उनको अपने ना सर्वाइवल की ऐसे लगता है, वो डेली बेसिस पे जंग लड़ते हैं और वो बड़ा डरते हैं. और अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू उन्होंने क्या किया था, अपने फ्यूचर जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया था.
राइट,
मतलब अगर आप इसको सोचें ना कि अच्छा जी आपसे भी हाथ मिला लिया, आपसे भी अब मैंने ओके कर लिया जी, अगर मैं गली में रह रहा हूँ ना तो मैं एक अगर ख़तरे में था तो मैंने जी 10 में से 8 लोगों से हाथ मिला लिया, नाउ आई एम सिक्योर. तो इसराइल उस जानिब बढ़ रहा था 2021 में, उनकी ट्रेजेक्ट्री ये थी. पूरी यूएस की सपोर्ट है, अरब भी आ रहे हैं उधर से. एक महीना पहले एमबीएस ने कह दिया कि वी आर गेटिंग क्लोजर टुवर्ड्स हिस्टोरिक डील विद इसराइल.
बिल्कुल, और उन्होंने उसका सिक्योरिटी काउंसिल में या जनरल असेंबली में अनाउंस किया था, 6-7 और कंट्रीज भी आएंगी.
इसराइल ने कहा था इसराइल की, इसराइल बड़ी कोशिश करता है कि ना वो करे जो पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज हैं.
हाँ.
ये अरब्स को या इवन उर्दगान को भी.
हाँ.
अब क्या हुआ, अब उर्दगान ने जो रैली निकाली है इस्तांबुल में तो उसमें उन्होंने फुल खुल के बोला है, और इसराइल को वहां से भी बड़ा दुख हुआ है कि जी हमारी बैड पीआर और ये वो.
हाँ.
वो पूरी वो हब है इस्तांबुल भी एक.
हाँ.
तो वहां से भी उनको एक बैड पीआर मिली है इसराइल को. अब हो क्या रहा है कि ये चाहते हैं कि हमें बैड पीआर ना मिले और जी अंदर से डरे भी हैं.
हाँ.
वो सर्वाइवल वाली बात.
Right.
अब जब वो चीज़ इनको नहीं मिलती ना.
हाँ.
और जब इनको लगता है कि जब इनको नज़र आता है कि हमारी तो बदनामी हो रही है.
हाँ.
जब बदनामी होगी तो जब यानी कि ग्लोबल रिएक्शन आएगा तो उधर से ईरान और इनका भी रिएक्शन आएगा, तो वो उस डर के मारे ना वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो जिसे कहते हैं ना
एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं,
क्रेजी एक जो होता है
मैनिक किस्म का.
हाँ, मैनिक वो फिर उस तरह की वो करते हैं. वो फिर नहीं देखते कि वहाँ पे उस जगह पे वो रेफ्यूजी कैंप है या हॉस्पिटल है. वो उस पैनिक मोड में ये मुझे जो नज़र आ रहा है, ये बहुत मतलब कम लोगों ने एनालाइज़ किया होगा कि अगर आप उनकी शक्लें भी देख लें जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं नतन्याहू अपनी डिफेंस मिनिस्टर के साथ और अपने आर्मी चीफ के साथ, उनकी आप शक्लें देख लें, वो कोई नॉर्मल शक्लें नहीं हैं. कोई जहाँ पर पीस नज़र आ रहा उनके मुँह पर वो बिल्कुल घबराए हुए हैं.
हाँ.
और ये जो अटैक्स कर रहे हैं बिल्कुल, वो कहते हैं कि एक भी अगर होगा ना हमास का बंदा किसी एक जगह पे तो हमने उस जगह को पूरी जगह को उड़ा देना है. ये एक इरेशनल थिंग है, ये एक टोटल क्या कहें इसको कि इसकी कोई
मतलब अगर आप इमोशंस एथिक्स और मोरालिटी को भी दो मिनट साइड पे रखें ना.
हाँ हाँ.
इवन वॉर के या फॉर वो होता ना कि जब आप किसी वॉर में जाते हैं तो आपके कोई स्टेटेड पर्पस होता है कि यार मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं.
बिल्कुल बिल्कुल.
ये इवन वो ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं अचीव करता, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब कर रहा है. द मुस्लिम्स अक्रॉस द रीजन आर नाउ बिगिनिंग टू हेट यू विद अ पैशन.
जो आप चाहते हो कि वो आपको ना हेट करें.
हाँ.
वो आपको हेट मिल रही है, और उसकी जब आपको वो डर लगता है कि यार वो अच्छा ये नैरेटिव शायद इनकी वजह से हाईलाइट हो रहा है इन फलस्तीनियों की वजह से, तो इनको मार दो.
हाँ.
ये थिंकिंग है उनकी.
हाँ.
अच्छा अजी ये जिंदा रहेंगे तो ये नैरेटिव रहेगा, तो मार दो शायद खत्म हो जाए. नहीं हो सकता
है, नहीं हो सकता है ऐसे.
ये नहीं समझ पाते.
आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि उनकी जो शक्लें हैं, जो अगर आप उनको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, इट रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ यूक्रेन. एंड जो यूक्रेनियन प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट है ना, उनका प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट है,
प्रेजिडेंट ज़ेलेंस्की.
हाँ, ज़ेलेंस्की और उसकी जो इर्द गिर्द के लोग थे अर्ली डेज में, उनका ये वाला वो आता था कि जी एकदम से ना परेशान डरे हुए. हालांकि इसराइल को हमारे लिविंग मेमोरी में इसराइल वॉज द कम्प्लेसेंट सुकून में ठहराव के साथ. हाँ, हाँ. वो अपना घर है, वो बड़ा गॉड फादर था उस रीजन का.
फादर था, यूएस का कैप्टन है सर.
हाँ,
ये इसराइल प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ.
एग्जैक्टली.
यूनाइटेड स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट.
एग्जैक्टली. सो देन द क्वेश्चन कम्स, और आपने बोला, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला, आपने कहा कि यू नो अमेरिका जो है वो डैडी था, वो प्रोटेक्ट करता था, वो सारा कुछ था.
अभी भी करता है. हाँ.
अभी भी करता है. सो इसराइल से पहले आई'ड लाइक टू एनालाइज अमेरिका, राइट? एंड आई'ड लाइक टू एनालाइज के अमेरिका के जो पिछले लेट्स से 15 साल के जो गेम्स हैं उसमें क्या हुआ. आई थिंक लिबिया वाज देयर लास्ट जिसे कहते हैं सक्सेस. उसके बाद वो वेनेजुएला में गए. वेनेजुएला में उन्होंने बड़ी कोशिश की जी उसको वो जो है मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू किसी तरह से ऑस्ट्रसाइज करें. नहीं जीत पाए. इवेंचुअली दुनिया जाहिर है इंटरनेट पे आ चुका था, सारा कुछ था. अब ये डिफीट्स मैं आपको बताता हूँ. अभी इन्होंने इस वॉर से 2 हफ्ता पहले वेनेजुएला पे सैंक्शंस ख़त्म किए हैं, क्योंकि वेनेजुएला हैज़ अ लार्जेस्ट वो ऑफ ऑयल. तो उनको डर लग रहा है कि यहाँ पे
अगर कुछ हुआ, ऑयल की सप्लाई मुतासर हुई. हाँ, तो वो एक सिक्योर कर लो.
तो वहाँ पे उन्होंने सैंक्शंस की इफेक्टिवली डिफीट एक्सेप्ट की कि यार हम रिजीम चेंज नहीं कर सके, हम इनसे ट्रेड करेंगे और इनका ऑयल लेंगे. सीरिया में ये घुसे, इनका स्टेटेड एम था जी हमने रिजीम चेंज करनी है.
इन्होंने नहीं चेंज हुआ, 12 साल हो गए.
ठीक है, ना सिर्फ चेंज हुआ बल्कि उसका फॉरेन मिनिस्टर सऊदी गया. ठीक है, दोस्ती यारी कर
रहा है, सऊदियों से दोस्ती कर रहा है,
दोस्ती यारी कर रहा है.
सऊदी जो उन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता था जो यूएस के साथ मिलके उनका तख्त
उलटने की कोशिश करते थे.
और इस जंग से 1 हफ्ता पहले शायद असाद गए हैं चाइना.
हाँ, और जो उनका वेलकम हुआ है,
वो वेलकम हुआ है, और इन्वेस्टमेंट उनकी बेगम का जो वेलकम हुआ है चाइना में, तो वो उधर डीलों की बातें चल रही थी. तो चाइना इधर देख रहा था पीस.
हाँ.
चाइना पीस की वो कर रहा था, उम्मीद लगा के बैठा था. हाँ. कि मैं सऊदी ईरान का हाथ मिला दिया,
मैं तो पूरा रीजन अपसेट कर दूंगा.
सब ओके, नहीं इतनी सिंपल नहीं है गेम.
बट सीरिया में हमने देखा. हाँ. ये हुआ. यूक्रेन में बड़ी क्लियर डिफीट होती हुई नजर आ रही है.
क्लियर.
सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट द अमेरिकंस आर नो लॉन्गर द जो मोहल्ले का बड़ा बुली था, जो कि आके जो है ना जिसके साथ अमेरिका का ठप्पा लग गया, वो तो जी वाह वाह ज़बरदस्त. एंड वहाँ पर जहाँ पे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट एटलीस्ट अमेरिकन इंटरनेशनल पावर वीकन होती नज़र आ रही है, वहाँ पे फिर आप क्वेश्चन मार्क आते हैं कि अच्छा अब इसराइल का क्या होगा. बिकॉज इफ़ दे कुडंट प्रॉप अप यूक्रेन विच वॉज लिटरली नेक्स्ट टू यूरोप.
बिल्कुल.
और
जहां पे नेटो के हब के साथ
था,
नेटो के साथ, जिसको नहीं आप बचा. हाँ. सके.
तो यहां पर तो यू आर सराउंडेड बाय योर कोट एंड गोट
एनिमीज. यस.
तो फिर उसमें क्या होता हुआ, आप क्या देख रहे हैं
सर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात की है. ये जो आपने कहा है ना कि यूएस का वो किरदार अब नहीं नजर आ रहा, वो चौधरी वाला जो 80s में नजर आता था, 90s में, अर्ली 2000 वो आखिरी उनका था. मुझे लगता है कि जिनकी सबसे क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा डेंट पड़ा है ना.
हाँ.
उसके लिए वो हम वापस 2 साल पीछे जाएंगे, जब हम इकट्ठे बैठे हुए थे इन्हीं दिनों में.
हाँ.
2021 अगस्त.
बिल्कुल ऐसा.
जो अफगानिस्तान से निकले हैं ना, ये इनकी क्रेडिबिलिटी पे, इनकी माइट.
हाँ.
इनकी ग्लोरी, उस सब पे क्वेश्चन मार्क लग गया है.
बिल्कुल ऐसा.
कि जलील तो यूएस भी हो सकता है और शलवार कमीजे पहने वालों के हाथों.
हाँ.
जो 70 में जिन्होंने वो उनके हाथों अगर ये जलील हो सकता है.
और ये लोग भी कह रहे हैं, भाई ये मैं अमेरिकन एनालिस्ट का कह रहा हूँ, कह रहे हैं कि तुम लोग हमास और हिजबुल्ला को हल्का ले रहे हो, वो अफगानिस्तान में मार खा कर आए. हाँ, तो ये लोग तो बहुत जैसे कहते हैं
बैटल हार्डन है. हाँ, ये हमास वगैरह ये ज्यादा टफ. अफगानियों के पास तो पूरा एक पूरा मैदान था ना, तो कहीं भी जा सकते थे. ये एक इतनी सी जगह पे रह के भी वो करते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं, हमास वगैरह.
हाँ.
तो ये चीज उनको ज्यादा वही स्ट्रांग जाहिर करती है.
राइट.
ये चीज बताती है कि इसराइल कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुका है कि इसराइल समझता है कि ये इजीली कर लेगा, अमेरिका का हाथ है हमारे सर पे। लेकिन इसराइल मुझे जो लग रहा है बहुत ही डीप क्राइसिस में इस वक्त चला गया हुआ है।
राइट,
जैसे मैंने कहा ना कि 2 साल पहले जब ये 3 साल पहले अब्राहम अकॉर्ड्स कर रहे थे तो इनके जहन में था कि हमने अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज कर लिया है। अब ये हमास ने जो हरकत की है ना, ये इसने पूरी आई थिंक डायनामिक्स को काफ़ी हद तक चेंज इस तरह कर दिया है कि जो सऊदीज ये हाथ में लाने जा रहे थे इसराइल, ये तो
भाई ऑफ द टेबल है,
वो तो ऑफ द टेबल है, वो नज़र नहीं आ रहा नियर फ्यूचर में होता हुआ। और जब वो हो जाएगा इसराइल के लिए वहाँ से भी खतरात, और फिर जो प्रॉक्सीज कह लो या रेजिस्टेंस ग्रुप्स कह लो, वो सारे एक्टिव हो चुके हैं। मैं सीरिया के थ्रू भी वो कह रहे हैं लोग आ रहे हैं लेबनान,
अगर प्रॉक्सीज की बात कर लेते हैं।
हाँ,
a lot of people are looking at Palestine and Israel, Palestine and Israel, और वो कहते हैं कि ज़ाहिर इंडिविजुअली देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा गजा में हमास है,
लेबनान
में हिज़्बुल्लाह है। मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, मैं ईरान को उठाता हूँ, हमने अभी पहले बात की ना अमेरिका क्या करता है ईरान को,
ईरान
की स्टेटेड प्रॉक्सीज यूथ जो वो है आपके क्या नाम है हूती यमन में,
यमन में
ठीक
है,
हाँ।
इराक में उनका है इस्लामिक
जिहाद,
इस्लामिक रेजिस्टेंस या जिहाद, हाँ। वो ईरान उनको भी कर
उनको भी कर रहा है,
वही उस तरह के लोग सीरिया में भी बैठे
हैं, सीरिया में अलकुद्स है आई बिलीव,
हाँ।
लेबनान में हिज़्बुल्लाह है,
हाँ।
अब जब आपको रियलाइजेशन होती है कि एक जगह से पेट्रनेज है, तो आपको ये भी रियलाइजेशन होती है कि ये इंडिविजुअली अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर नॉर्थ में, और मैं आज देख रहा था हिज़्बुल्लाह के नॉर्थ में one of the things that they're doing is ki they're targeting their surveillance infrastructure. acha yes. surveillance infrastructure more often than not aap hamesha operation se pehle karte ho theek hai, so wo bada clear nazar aa raha hai unhone, kyunki already 2-3 dafa unofficially ye bol diya hua tha ki hum kya kehte hain usse agar ground invasion hui to hum us pe karenge, wo usse pehle wo soften karte rahe hain upar ke area ko jisme unhone surveillance ko minimize kiya hai. ग्राउंड ऑफेंसिव का बेसिकली वो वेट इस वजह से कर रहे थे बिकॉज अब 20,000 एज ऑफ लास्ट नाइट 20,000 इजरायली ट्रूप्स आर राइट नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द साउथ नॉर्थ, पहले इनकी सारी कंसोलिडेशन थी नॉर्थ में, जैसी नॉर्थ में कंसोलिडेशन गई हॉलीडे थी, इन्होंने हमास ने अटैक किया और अटैक करके एक बहुत मैसिव ब्लो दिया जिससे कॉन्फिडेंस शैटर हुआ इसराइल का क्या ये तो हमारे अंदर आके मार सकते हैं। फिर इन्होंने सडनली स्क्रैम्बल अराउंड किया, इन्होंने फ़ौरन से बंदे नीचे भेजे हैं, ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट किए, तो हिज़्बुल्लाह ने उधर से मार मार के सर्वेलेंस को करना डैमेज करना शुरू किया है, और अब पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जो है ना अब एक प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे इनके खिलाफ अप इन द नॉर्थ। नाउ जो मैं ईरान का इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ईरान इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑपरेशन है ना, वो हिस्टोरिकली कभी भी नहीं हुई।
हाँ, यानी कि कनेक्शन
मतलब एक स्ट्रेटजी है ना, हाँ। अभी एक स्ट्रेटजी सिमल्टेनियसली रन हो रही है कि अच्छा हमास क्या करेगा, हिज़्बुल्लाह क्या करेगा, सिंक नजर आ रहा है आपको,
सिंक
राइट, कि किस मोमेंट पे किस तरह? ये इसराइल ने आज तक उस लेवल पे कभी ऑपरेट ही नहीं किया। ये 1967 की बात करते हैं सर, उस टाइम के ऊपर तो ऑयल मनी नहीं आया था, मिडल ईस्ट ने अपने आपको स्ट्रेंथन नहीं किया था, जंगें नहीं लड़ी थी, और वो सारे अलग 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 अपना कर रहे थे इंडिविजुअली।
बिल्कुल,
टाइम्स हैव चेंज्ड रेडिकली दिस टाइम अराउंड, एंड मुझे लोग आके कह रहे थे कि यार ईरान के ऊपर तो अमेरिका हमला कर देगा, मैंने कहा भाई ईरान इज़ अ पावरफुल नेशन, दे आर नॉट इराक, ईरान ड्रोन देता है रशिया को जो यूक्रेन में यूज़ करता है, यू नो दे आर नॉट अ पाकिस्तान है ना कि हम F-16 अमेरिका से लेते हैं, JF-17 चाइना से लेते हैं,
वो और वो फ्रिगेट्स चाइना से लेते हैं, वो इस तरह नहीं है वो। तो
ईरान को आप इस सब में कैसे देख रहे हैं?
ईरान का क्लियर यहाँ पे एक रोल बनता है, उनका जो काउंटर में जो चैलेंज करने वाला है तो वो ईरान ही नज़र आता है, क्योंकि ईरान को ये जो हमने ये इन ग्रुप्स की बात की है इन सब को कहीं ना कहीं सपोर्ट है, वो हिज़्बुल्लाह के चीफ से भी ओपनली मिलते हैं, ठीक है। फिर ईरान जो धमकियां भी सीधी लगाता है, उसने कहा अगर आप करोगे तो हम जंग का स्कोप फैला देंगे, सीधी वो बात करता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस दफ़ा देखी है ना ईरान की जो इस वक्त की गवर्नमेंट आई है ये रईसी वाली, ये बहुत प्रोएक्टिव है डिप्लोमेसी में भी, उनके फॉरेन मिनिस्टर सऊदीज वगैरह सबसे मिल रहे हैं, सऊदी से भी एक तो क्रेडिट जाता है कि इनको इन्होंने दोस्ती की हिस्टोरिक, फिर ये इन मिलिटेंट ग्रुप से भी मिल रहे हैं, ये यूएस से भी मिल रहे हैं, और ये भी खबरें आई कि यूएस इस्टेब्लिशमेंट से भी बैकडोर रबते हुए ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के ये गए थे जब यूएन अभी 3 दिन पहले,
हाँ।
तो इस क्राइसिस में ये डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव हैं इरानियंस,
और वो मैं वही कह रहा हूँ ना, अपनी पावर एग्जर्ट करते नजर आ रहे हैं,
पावर एग्जर्ट करते नजर, उनकी रेलिवेंस है किसी नेक्स्ट लेवल पे जो पाकिस्तान की नहीं है, जो हम अगर पाकिस्तान को करेंगे आगे डिस्कस, लेकिन पाकिस्तान की वो आप ईरान की रेलिवेंस चेक करें कि उधर उसका एक मिलिटेंट किरदार भी नजर आ रहा है कि वो इसराइल को वहां से भी चैलेंज कर रहा है, अभी वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कड़ियां मिलाएं तो
ये तो इट्स वेरी क्लियर
क्लियर है। और दूसरा आप ये भी, और उससे ही वो आपकी पुरानी बात याद है कि इसराइल के लिए ना अब वो जो आप कह रहे थे कि वो टाइम्स हैव चेंज वाली बात, तो टाइम्स हैव चेंज इसराइल के भी पहले तो लोग मतलब आम लोगों में पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन था कि इसराइल कोई ऐसी चीज है जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, इनविंसिबल यानी कि अनटचेबल,
राइट।
ये हमास के हमले ने ये सारा नैरेटिव ही उड़ा के रख दिया, वो जो आपने भी बात की कि एक तो अंदर घुस के मारना है तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो अभी हम देख रहे हैं इसराइल को इंगेज इतना कर दिया गया है कि वो मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक है जो एक सिंक में है डिफरेंट जगहों से, और उधर से ईरान खुल के तड़ियां लगा रहा है, यूएस उनको तहफ्फुज़ नहीं दे पा रहा, तो ये चीज और वो उसकी किसकी वजह से कि यूएस का डिक्लाइन जो हमने 2 सालों में देखा, तो ये चीज है कि अब वो जो लोगों के जहन में था ना कि इसराइल अनटचेबल है,
राइट,
ये बिल्कुल गलत साबित हो गया ये चीज। अब इसराइल के लिए मैं मुश्किल टाइम्स देख रहा हूँ, और कोई पता नहीं, अब जैसे अब्राहम अकॉर्ड में उन्होंने यूएई को तो ओके कर दिया था ना, यूएई जैसे यूएई की एक एग्जाम्पल है क्योंकि वो एक जरा हैवी वेट है, सऊदीया को वो करने की कोशिश कर रहे थे, कोई पता नहीं कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए यूएई भी कहे जी टाटा बाय बाय, क्योंकि यूएई अभी तक तो कर रहा है, इसराइल का साथ दे रहा है,
लेकिन हम देख रहे ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें इमर्ज होती जा रही है, लोगों के लिए टफ होता जा रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, पब्लिक से प्रेशर आ रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी थी, जब जिस दिन ये फाइनली हुआ था ना 7th को, द फर्स्ट कॉल दैट मोहम्मद बिन सलमान मेड वॉज टू द इरानियन प्रेसिडेंट
रईसी,
और इट वॉज द हिस्ट्री में पहली दफा डायरेक्ट कनेक्शन हुआ, हालांकि ये सऊदीज नॉर्मलाइज करने जा रहे थे इसराइल के साथ, राइट। सो दैट वॉज अ बिग शिफ्ट इन द रीजनल डायनामिक्स, जो कि अगेन विच आर अ टेल टेल साइन ऑफ पोटेंशियली ये किस तरफ जा रहा है। एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, जिस दिन अमेरिका जो है वो जो बाइडन की वो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि जी वो इधर ही वाज इन इज़राइल, और वो कह रहा था कि जी हम आपके साथ हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, उसी दिन BRI की कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वो एक वीडियो आई थी जिसमें वो दरवाज़ा खुला और जी जिनपिंग और व्लादिमीर पुटिन निकलते हैं और एक ग्लोरियस म्यूजिक है और वो हॉल्स में एंटर हो रहे हैं और 140 कंट्रीज के नुमाइंदे आ रहे हैं और वो $100 बिलियन की डेवलपमेंट अनाउंस कर रहे हैं, एक तरफ जेनोसाइड हो रहा है
और एक तरफ
डेवलपमेंट हो रही है। सो मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन को वाइडर करता हूँ, जो एक शिफ्ट जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना, चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब भी है रे डैलियो की और एक वीडियो भी उन्होंने यूट्यूब पे डाली हुई है उसके बारे में, वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि एम्पायर्स राइज करते हैं, एम्पायर्स कोलैप्स करते हैं, और उनका थीसिस ये है कि अमेरिकन एम्पायर जो है वो जिस तरीके से डच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ये सारे वो एम्पायर्स थे जिनकी जो करेंसीज थी ना वो ग्लोबल रिजर्व करेंसीज थी, जिस तरह डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, और उनका ये भी कहना है कि जो लार्जली ये कंट्रीज अपनी पावर ड्राइव करते हैं फ्रॉम द करेंसी स्टेटस, और उस करेंसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो वॉर्स करते हैं या जो भी वो करते हैं। अच्छा, उन्होंने थ्रू डिफरेंट वेरिएबल्स कि हिस्ट्री में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, उन्होंने ये कहा कि जी अमेरिकन एम्पायर इनहेरेंटली डिक्लाइन में, और जब एम्पायर डिक्लाइन में होते हैं ना तो वो वॉर्स में जाते हैं, वो एग्रेसिव वॉर्स में जाते हैं, बिकॉज उनको अपनी पावर मेंटेन
रीगेन करनी होती है ना,
डेस्परेटली
रीगेन करनी होती है,
एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको वाइडर करूं यहाँ पर, और अगर मैं इवन थोड़ा सा मैं पाकिस्तान को भी टच करूंगा, पाकिस्तान में लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता था, मैं कहता था यार इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, उससे पहले देखो दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में इस वक्त एक जंग चल रही है वन वे और दीदर, चाहे आप ट्रेड वॉर ले आए, चाहे आप हुआवी को बैन कर दिया आपने सैंक्शंस लगा दी चाइनीज चिप कंपनीज के ऊपर, ये सब एक जंग है, और जंग क्या है कि एक ग्लोबल हेजेमोन है, एक इंपीरियलिस्ट पावर है अमेरिका की शक्ल में, जो कि इस वक्त ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि चाइना लेड ग्लोबल ऑर्डर एक पोटेंशियल आ सकता है जो कि काउंटर वेट होगा। ये भी नहीं मैं कह रहा कि चाइना विल बी द ग्लोबल सुपर पावर, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड
की तरफ जा रहे हैं,
राइट, बिल्कुल। और अगर मैं पाकिस्तान में आऊं तो पाकिस्तान में जो हमने 2022 का शिफ्ट देखा वो बेसिकली दो एस्टैब्लिशमेंट्स का शिफ्ट था, जिसमें एक एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी कि दुनिया बदल रही है, फ्यूचर की दुनिया जो है वो मल्टीपोलर है और हमें अब इस वक्त अमेरिका या अमेरिकन टॉकिंग पॉइंट्स को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, हमने खुद इमर्ज करना है और न्यूट्रल होना है, और एक दूसरी इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि ये कह रही थी, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री से ये सीखा था कि यार अमेरिका ही चलाता है दुनिया,
अमेरिका ही चलाता है,
और उस
जंग, आई थिंक बूमर्स
बूमर, और उस जंग के नतीजे में हमने देखा कि एक दूसरी इस्टेब्लिशमेंट ने, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करके वो इस वक्त आपको, अगेन मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, हो सकता है अमेरिका सस्टेन कर जाए, बट अगर मैं एनालाइज करूँ तो हमारी लार्जली एक इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिशियंस भी हैं, थॉट प्रोसेस लाइक थॉट लीडर्स भी हैं, जो सारे ये सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर अमेरिका के साथ है, हमें यूक्रेन में उनका साथ देना चाहिए, हमें इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए था उस टाइम पे जब सऊदी कर रहा था। इवन आज भी जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आती है वो ये कहती है कि हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, वो ये नहीं कहती कि इसराइल बड़ा जुल्म कर रहा है, जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान कहता है,
पाकिस्तान कहता है,
राइट,
थोड़ा सा शिफ्ट नजर आ रहा है,
तो आपको एक शिफ्ट नजर आ रहा है,
काकड़ की ट्वीट से भी नजर आता है, वो उन्होंने पहली ट्वीट ये की कि वेरी हार्ट ब्रेकिंग सीन्स इन द मिडिल ईस्ट,
वो जिस तरह सेलिब्रिटीज नहीं कर रहे अमेरिका में,
वो सीन था
कि बड़ा एक डोसा
है, यकीन नहीं आया कि ये पाकिस्तानी पीएम की ट्वीट है, और उस पर तनकीद भी बहुत हुई थी,
राइट। सो तो वहां पर आपको कुछ सर्टन नैरेटिव्स, आपको नैरेटिव सुनने को मिल रहे हैं कि जी इंडिया राइज कर रहा है, हमें ट्रेड खोलनी चाहिए उनके साथ, गवादर में आप जाते हैं और जाके आप यूएस एंबेसडर को ले जाते हैं, दैट इज तमाचा मार रहे हैं आपने चाइनीज को,
चाइनीज को,
राइट। सो एक शिफ्ट ऑफ नैरेटिव है, एक शिफ्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है, एक शिफ्ट ऑफ पॉलिसी है, एंड उसको जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं अच्छा चलो ठीक है, अगेन मैं तो एक नाचीज हूं, मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिसी एक्चुअली अच्छी है, कौन सी जीतेगी, बट इसको समझने के लिए फ्यूचर को मैं ऊपर जाता हूं, ऊपर जाके देखता हूं कि दुनिया का निजाम एक एक अमेरिकन लेड ऑर्डर था और एक मल्टीपोलर ऑर्डर आ रहा है,
मल्टीपोलर,
और जो मल्टीपोलर ऑर्डर है वो यूक्रेन में भी जीता है, वो सीरिया में भी जीता है, वो ईरान इराक ईरान सऊदी की दोस्ती भी करा रहा है,
मिडिल ईस्ट में भी
प्रिवेल कर रहा है, वो 140 कंट्रीज में डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और वाइल वो ये सारा कुछ कर रहा है तो विद इन द अमेरिकन लेड ऑर्डर उनकी भी दो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसमें एक ट्रंप की एस्टेब्लिशमेंट है जो कहता है कि यार हमें वो एक नए अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, बिल्ड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है,
अमेरिकन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको करना है सपोर्ट,
हाँ उनको सपोर्ट करना है, जंगें खत्म करनी है, फालतू का जो हम पैसा लगाते हैं जेंडर प्रोग्राम्स में और इसमें और उसमें, वो पैसा वहां फेंकने से बंद करो और वापस अमेरिका में लेकर आओ। और वहां पे भी हम देखते हैं कि वहां पे जनवरी में एक एसेंशियली एक रिजीम चेंज ऑफ सॉर्ट्स होती है, पूरा मीडिया खिलाफ, सब खिलाफ, और ट्रंप को हरा करके जो बाइडन आके पुरानी एस्टेब्लिशमेंट फिर से आके बैठती है,
बैठ जाती है।
अब आज जब मैं जो बाइडन को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि उसकी अप्रूवल रेटिंग कहाँ पे खड़ी हुई है,
पथेटिक
है, अमेरिका में काउंटर नैरेटिव कितना स्ट्रांग है, अमेरिका यूक्रेन में किस तरह हारा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि रे डैलियो की बात दुरुस्त थी, जो साइंस नजर आ रहे हैं वो दुरुस्त थे, या जहां जहां पुरानी एस्टेब्लिशमेंट्स ने आके अपनी पावर को बचाने की कोशिश की है वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं,
यानी जहां पे उन्होंने फोर्सफुली
कोशिश की है वो उस पे फेल होते आ रहे हैं, और दुनिया द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड द डायनामिक ऑफ द वर्ल्ड एज वी आर सीइंग इट इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू रियलिटी दैट इज गोइंग टू बिगिन टू इमर्ज ओवर द नेक्स्ट 12-24 मंथ्स, मल्टीपोलर वर्ल्ड। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट
सर? आपकी दो तीन पॉइंट्स में लिखे थे, मैं पहले उनको, बाइडन से अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन किया किसी ने कि आप अपनी इकॉनमी का हाल देख लें, मतलब डेट सीलिंग जो आप टच कर रहे हैं
33 ट्रिलियन पे चले गए हैं,
तो आप इस सूरत हाल में दो जंगों को फाइनेंस कर सकते हैं कि नहीं? तो बाइडन साहब ने कहा वी आर द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड विद द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम कर सकते हैं। तो ये अमेरिका भी उस थिंकिंग में है,
उस एरोगेंस में
है, और उनका जो आपने कहा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा कि आपने हाथ मारे, आपने पाकिस्तान में बैठे बैठे एक अमरीकी के मुंह से निकलवा लिया
आपको याद है ना वो इंटरव्यू
सर, कमाल कर गए आप, कमाल कर गए आपने, इतनी बड़ी कन्फेशन, अब तो उस पर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का टैग हमें लगा नहीं सकता, वो खुद अमरीकी ने मुजम्मिल के पॉडकास्ट में बैठ के और अमरीकी पॉलिसी मेकर ने,
और ये वो पॉलिसी मेकर थी जिनके हस्बैंड जो थे वाज द अमेरिकन एंबेसडर हु डाइड ऑन द प्लेन विद ज़ियाउल हक, she was the CIA director for Pakistan,
unbelievable,
where before she retired, so she was a very senior official very who senior set the military official. industrial complex thing, yeah,
so
yeah.
तो सर आपने वही global जो change की बात की, अब आप इसमें सबसे बड़ी जो चीज जो BRICS की आपने developments देखी होंगी, अब BRICS में ये जो पांच countries हैं इन्होंने Saudis वगैरह को भी invite कर लिया और ये नई currency की तरफ जा रहे हैं, और इसमें आपने देखा जो वाहिद resistance आई है ना इन्हें वो इंडिया की तरफ से आई है, क्योंकि इंडिया ने वेस्ट के साथ भी बना के रखनी है, तो इंडिया नहीं शायद आपने देखा एक हफ्ते में ब्रिक्स हुआ है
हाँ.
उसके बाद ये कनाडा वाला इशू आ गया सिख वाला
हाँ.
इंडिया को उन्होंने शट अप कॉल दी कि तुमने अगर इस कैंप के साथ गए ना
हाँ.
तुम बड़ी मस्तियां कर रहे हो इस कैंप के साथ
हाँ.
तो हम तुम्हें तुम्हें सबक सिखाएंगे
हाँ.
तो उधर ने यूएस की वो फाइव आईज भी आ गई
हाँ.
यूएस की इंटेलिजेंस की जी यस इंडिया इन्वॉल्व था हाँ. इंडिया के रॉ के ऑफिशियल्स
इन्वॉल्व थे बेसिकली ये दिखाया कि यार तुम्हारे बहुत से दोस्त हो गए बट वो तो आखिर में ब्राउन ग्लोबल साउथ
ब्राउन ग्लोबल साउथ
हम गोरे जो है ना वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते
और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात हो रही है उसमें उसको डिफाइन करने में इंडिया का भी एक रोल होगा
हाँ.
और इसलिए यही जो पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है वेस्टर्न जो यूएस लेड एस्टेब्लिशमेंट है वो कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा एलाइज उनको ना खोए जिनमें इंडिया भी है जिनमें पाकिस्तान भी है तो वो यही कोशिशें चल रही हैं और अब पाकिस्तान के से अगर हम लोकलाइज कर लें
हाँ.
तो हमें क्लियर नजर आता है आपने जो बात की दो थिंकिंग्स
हाँ.
अब जो नई पाकिस्तान में रेजीम चल रही है उसकी पॉलिसी आप देख लें विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान विद रिस्पेक्ट टू इजराइल विद रिस्पेक्ट टू ईरान विद रिस्पेक्ट टू चाइना एवरीथिंग इज चेंज्ड
एब्सोल्युटली
ये
इट्स माइंड बॉगलिंग राइट
माइंड बॉगलिंग कैसे हो जाता है हाँ ओवरनाइट लेकिन उसके पीछे एक दो साल की
मेहनत ऑफकोर्स
एक दो साल की उसमें मेहनत नजर आती है
हाँ.
और उसके बाद हमें चीजें लेकिन वो फिर मुझे आप वाली बात भी याद आती है कि अगर वो प्रिवेल ना की
हाँ.
मतलब अमेरिका में जो करंट एस्टेब्लिशमेंट अगर वो ना काम होगी फिर इधर वाली को भी नुकसान का सामना करना
और फिर कुछ रीअलाइन करना पड़ेगा
रीअलाइनमेंट तो करनी पड़ेगी
क्योंकि
लोग आपकी पब्लिक देखें वो पहली तपी बैठी है हाँ. लम्स में आप देख लें लम्स आपका जो अब ये गरीब बच्चे नहीं है
हाँ.
ये अमीरों के बच्चे हैं
हाँ.
ये इतने तपे में
हाँ.
तो आप गरीब किसी
आप टिकट
से हिम्मत करें पंजाब यूनिवर्सिटी के मैसकॉम में जाएं
हाँ.
या पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएं या किसी दूसरी चले हैं पंजाब नहीं आप किसी मिडिल लेवल को एफ सी में चले जाएं
हाँ.
उधर आप एफ सी में जाके दिखाएं मैं आपको चैलेंज करता हूँ
हाँ.
जो वहां पे लोग करेंगे आपके साथ
हाँ.
तो ये आप सेंटीमेंट अभी ये आपकी एलीट यूनिवर्सिटी से आ रहा है
और थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड हाँ. करने की जरूरत है ना कि अगेन मैं हाँ. मैं नहीं कह रहा कि कौन अच्छा कौन बुरा आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दो नैरेटिव्स हैं दो थॉट
प्रोसेसेस हैं और पब्लिक सेंटीमेंट
पब्लिक सेंटीमेंट है अब उस नैरेटिव और पब्लिक सेंटीमेंट में हिस्टोरिकली जब हमने देखा कि पाकिस्तान में चेंज ऑफ रेजिम्स हुआ तो उसमें हिस्टोरिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है लोगों को सुकून लाने का कि लोग ठीक है पीपल केयर अबाउट ईरान पीपल केयर अबाउट चाइना बट पाकिस्तानी बंदे को चाहिए रोटी कपड़ा मकान
बिल्कुल
उसको नौकरी चाहिए उसको उसका काम चल जाए ना तो उसको पाकिस्तान से बाहर का वो ज़्यादा सोचता नहीं है हालांकि वो सोचना शुरू हो गया है क्योंकि अब उसके पास टिकटॉक है ट्विटर है चीज़ें हैं तो अब वो आम पाकिस्तानी भी अब दुनिया भर की बात कर रहा है वो पुराने वाला पाकिस्तानी नहीं रहा कि बस जी मेरे गाँव में क्या हो रहा है और गैस आई नहीं आई लेकिन ऑन टू सम लेवल आप उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स कर देते हो इवन इफ यू आर रनिंग एन अनपॉपुलर थॉट प्रोसेस राइट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोरिकली हमने ये देखा कि जब भी जंगें हुई हैं तो पाकिस्तान जंगों में घुसा
और फायदा उठाया
और पैसे लिए
आने पैसे लिए मुशरफ ने लिए
और उस
और
पैसे
वो जो इकोनॉमिक अच्छी लगती थी इकॉनमी नजर आती थी कि अच्छी है ग्रोथ रेट अच्छा है वो बेसिकली डॉलर्स आ रहे होते थे
एग्जैक्टली
3-4 बिलियन डॉलर आ रहा होता था डायरेक्ट
और लोग सुकून में आ जाते थे
सुकून में आ जाते क्योंकि हमारी इकॉनमी को चाहिए यही होता है
एग्जैक्टली
2-3 बिलियन डॉलर
थोड़ी गाड़ियां आना शुरू हो जाए रोडे बनना शुरू हो जाए लोग कहते हैं यार
एक मोटर में बन गई और वो सब ओके है जी वो दो कंपनियां आ गई टेलीकॉम की
हाँ.
और 4 चैनल आ गए एक रोड बन गई थी
तो लोगों ने कहा यार ये अच्छे हैं पुराने वालों से तो बहुत बेहतर
है बहुत बेहतर है
इस बार सिचुएशन फर्क है
yes.
इस बार आपने अगेन मैंने कहा कि जो 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 ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट है वो बिकॉज हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज रिलाइड ऑन डील्स पाकिस्तान हैज रिलाइड ऑन कि हम कोई पॉलिटिकल मैनूवरिंग करके कहीं ना कहीं कोई गेम निकालें
जैसे अगर अफगानिस्तान में अमेरिका आया है या रूस आया है तो हम exactly. इसमें कुछ ढूंढें
इसमें कुछ
छोटे जुगाड़ इकॉनमी
हाँ.
के जुगाड़
अगर उस किस्म की आप या और कोई पोटेंशियली इजराइल को एक्सेप्टेंस हाँ. की डील थी या वो थी
इजराइल के
मुझे लग रहा है कि वो डील शायद ना आए आने वाले वक्त में क्योंकि अब हमने जो ओरिजिनल थीसिस बिल्ड किया है कि अमेरिका इज ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच्ड द मनी इज गोइंग टू यूक्रेन द मनी इज गोइंग टू इज़राइल
अब वो शायद पाकिस्तान को ना मिले
पाकिस्तान को शायद ना मिले
पाकिस्तान को कैसे मिलेगी जब दो जंगों में वो ऑलरेडी बिजी है
हाँ
पाकिस्तान पे वो ध्यान उस तरह दे सकेंगे जितना वो जितने हमारे लोगों को उम्मीद थी कि अगर हम यूएस कैंप की तरफ जा रहे हैं उनका ये थॉट प्रोसेस था
हाँ.
वो इसी नीयत से होगा ना कि यार कुछ ना कुछ फायदा होगा
हाँ.
तो वो फायदा क्या मिल पाएगा दिस इज द बिग क्वेश्चन
और अगर वो फायदा ना
हाँ,
मिले
हाँ.
तो क्या पीस बरकरार रहेगा जिस तरह इस वक्त बरकरार है, कि सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आज तो हमें मिल गई मुल्क के अंदर, तो हम थोड़े से सुकून में आ गए ना. हमें पता है, आपने कहा जी पब्लिक सेंटीमेंट बहुत एग्रेसिव है,
बहुत एग्रेसिव,
ठीक है. हाँ. लेकिन वो पब्लिक सेंटीमेंट इस वक्त थोड़ा पॉज हुआ है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है डॉलर स्टेबल हो गया, चलो ठीक है
पेट्रोल कम,
पेट्रोल थोड़ा कम हो गया. बट अगर तो अब लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं कि कौन सी डील आएगी तो कौन सा पैसा आएगा. तो लोग जो आज हालात हैं वो अच्छे हालात नहीं है,
नहीं है.
आज सिर्फ स्टेबिलिटी है, लोग टाइम दे रहे हैं कि यार 3 महीने लो, 6 महीने लो,
सर्वाइवल मोड पे.
हाँ, थोड़ा सा टाइम लो और हमें डील ला के कोई कहीं ना कहीं फायदा,
कहीं ना कहीं फायदा दो, या तो हम बाहर निकल रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं लोग. आप स्टैट्स देख रहे हैं, 8 लाख लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं इस साल में.
हाँ.
जो पिछले साल से ज्यादा है, पिछले साल टोटल 833 थे.
बिल्कुल.
अभी 8 लाख हो चुका है,
राइट,
चल रही है.
तो ये मिलियन तो क्रॉस करेगा,
मिलियन क्रॉस कर जाएगा, ये रिकॉर्ड नंबर में जाएगा.
तो अगर ये डील ना आई तो प्रेशर मुझे लगता है कि इंटरनली पढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड देन फिर रीअलाइनमेंट आनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा.
बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हो. और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन, कोई ईरान से पंगा कर लेता है, तो ईरान अगर वो कुछ धमकी लगा दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और वो ये चीज़ें हिस्ट्री में हुई हुई हैं. 1973 में ऑयल एम्बार्गो लगाया था अरब ने, तो अभी भी कुछ ऐसी अगर चीज़ें एस्केलेट कर जाती हैं इनके दरमियान ईरान, तो एक तो उधर से भी प्रेशर आ सकता है, आपकी इकॉनमी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती. फिर आपको जो इसराइल को जो मानने का कुछ लोगों को यहाँ पे कोई शौक होगा, और ऑब्वियसली दो सोचें होती हैं उनको अपना.
हाँ.
तो वो भी पैकेज अभी नहीं आता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि हमने फॉलो करना था सऊदीज को.
बिल्कुल ऐसे
सऊदीज करेंगे तो हमारा भी ओके हो जाना था.
हाँ.
वो अब सऊदीज का तो नहीं अब नजर आ रहा, जैसे हमने कहा ऑफ द टेबल लग रहा है.
नहीं, और अब पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट नाउ. पब्लिक सेंटीमेंट, पब्लिक खा जाएगी भाई,
पब्लिक खा जाएगी जो फलस्तीन के साथ किया उन्होंने जो. और इस सिचुएशन में,
हाँ,
इस सिचुएशन में आप
सर अगले 10 साल भी नहीं, पब्लिक नहीं भूलेगी जो इस वक्त लोगों ने देख लिया है ना,
जो देख लिया है, जो सोशल मीडिया दिखा रहा है, जो बच्चों की कटे हुए सर दिखा रहा है,
हाँ,
फलस्तीनी बच्चों के, वो नहीं भूलेगी दुनिया.
हाँ.
और ये मैं वही बात है ना कि हमास ने पूरा ही
सिस्टम
चेंज ही करके रख दिया है.
मैं पिछले दिनों देख रहा था, समवन सेड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, उन्होंने कहा कि हमास ने ना, हमास को पता था ये सुसाइड मिशन है, लेकिन हमास को ये भी पता था कि अगर सऊदी से नॉर्मलाइजेशन हो गई तो पैलेस्टीनियन कॉज खत्म
हो जाएगा.
तो उन्होंने बेसिकली अपने आप को मारा है फॉर द सेक के जो नई जनरेशन जो भूल गई थी, वो कह रही थी यार ये क्या पंगा लगा रहता है फलस्तीन में, ये इसराइल को फाइनल करें, सिस्टम करें, जो भी करें. अब पूरी दुनिया को उन्होंने ये दिखा दिया है कि एग्जैक्टली क्या था इसराइल. उन्होंने अगली जनरेशन को बेसिकली एक्सपोज करके रख दिया,
इसराइल को एक्सपोज करके.
जो मिलेनियल्स हैं, जो जेन जी हैं, वो वापस उनमें वो पैलेस्टीनियन कॉज की जान आ गई है, जो कि हमारे बड़ों में थी. हमारे और हमसे छोटे बच्चे कहते थे यार ये पता नहीं क्या खा पे, आई डोंट नो, क्योंकि उनको हिस्ट्री नहीं पता थी. तो उन्होंने अपने आप को मार के असेंशियली पैलेस्टीनियन कॉज को अगले 50 साल के लिए जिंदा कर दिया,
50 साल के लिए जिंदा कर दिया. और आप देखें ये जो रीजन है, अब इस पूरे रीजन में सीरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. सीरिया का किरदार, अब सीरिया जैसे आपने बात की कि उसको वो गिराने की कोशिश करते रहे, असाद रिजीम को नहीं गिरा. उसकी अच्छा उसको सपोर्ट किसकी थी, रूस और ईरान की. अब ये इस तरह ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने वाले ना, इस तरह वो अमेरिका को दबोच रहे हैं.
हाँ.
कि एक मिलिटेरिली डायरेक्ट, जैसे रशिया वो अपना वैगनर ग्रुप, उसकी अपनी प्रॉक्सीज हैं.
हाँ.
उधर उसने यूक्रेन में नथ डाली हुई है, उधर अफ्रीका के कंट्रीज में. अच्छा. हाँ. अफ्रीका वाले भी राइज कर रहे हैं.
हाँ. वो आपने नाइजर का कॉन्फ्लिक्ट देखा
सर? मैंने कवर किया उसको. नाइजर, बर्किना फासो सीधा उन्होंने कहा निकालो फ्रेंच ट्रूप्स, निकलो इधर से.
मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो कभी सोच भी नहीं सकते
सोच. सर आधी दुनिया तो उसने बगावत का आलम बुलंद कर दिया अमेरिका के खिलाफ, और वो चाइना से सारे डील्स की तरफ जा रहे हैं.
हाँ.
तो मैं ये बात कह रहा था कि ये इस तरह चाइना यूएस को दबोच रहे हैं, ये ईरान ऊपर से रशिया और ईस्टर्न साइड से चाइना. इस तरह दबोच रहे हैं कि ईरान इधर से मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, रूस वो अपनी प्रॉक्सीज को, वो स्ट्रेटेजिक गेम खेलता है.
हाँ. वो बेसिकली यूरोप को पकड़ा हुआ है ना,
वो पकड़ा हुआ है
यूरोप को, रिसेशन में रशिया ने डाला हुआ है कि यूरोप कुछ सोच ही नहीं सकता.
और अब चाइना को वो इनवाइट उन्होंने कर लिया था असाद ने और ईरान ने कि अब आप आएँ, हमने अरब्स के साथ दोस्ती कर ली, अब आप अपना रोल ढूंढें, मतलब हमारे पास
अपना एजेंडा दें. हाँ, आप बताएं कि आप दुनिया को कैसे,
मतलब मिलिट्री पावर से हमने पकड़ा हुआ है अमेरिकन्स को, उनकी बेसिस पे अटैक होते रहते हैं सीरिया. अब चाइना को भी उन्होंने हाथ पकड़ के ले आए कि अब आप इन्वेस्टमेंट करें.
हाँ.
तो ये गेम प्लान है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, रूस का और चाइना का, कि हाउ टू यू नो डेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस फोर्सेस.
आपने पुटिन की रिसेंटली 2-3 स्पीचेस आई थी, एक पर्टिकुलरली आई थी उनकी जो कि एक उनका सॉर्ट ऑफ वो होता है सेशन होता है हर साल जिसमें ना वो थिंक टैंक्स को बुलाते हैं अपने पूरे अक्रॉस रशिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसमें उन्होंने आके 20-25 मिनट की एक स्पीच दी और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आंसर देखने का हुआ था आपका इत्तेफाक?
नहीं हुआ नहीं था, लेकिन मैंने वो बयानात सुने थे। एक तो कल भी मैं सुना था कि वो इमोशनल हो गए थे गजा के बच्चों के बारे में बात।
नहीं ये तो बहुत रीसेंट है, ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से तकरीबन समझ लें एक हफ्ता पहले की बात है, और उस पर जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है वो, और मैं आई हैव बीन लिसनिंग टू द स्पीचेस बाय पुटिन ओवर द लास्ट 1 ईयर। लोग जनरली नहीं करते उनकी क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज में होती हैं, ट्रांसलेटर्स के साथ होती हैं। आप मुझे सिर्फ ये होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी चीज़ों में तो आपको वर्ल्ड लीडर्स को सुनना ज़रूर चाहिए ताकि समझ आए कि वो क्या सोच रहे हैं,
क्या सोच रहे हैं।
अच्छा उनकी स्पीचेस में ना अगर आप रिसेंटली देखें पिछले 6 महीने में खासकर, तो बार बार वो ये बात करते हैं कि अमेरिका का एक इंपीरियलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है।
हाँ,
हम अमेरिकन इंपीरियलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हैं।
नहीं, ये
हम
तो
एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में जाना चाहते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे की वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें,
रिस्पेक्ट करें।
वो बार बार ये दिमागों में डाल रहे हैं कि यार अमेरिका जो है ना वो अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका अपने प्रॉब्लम्स को एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका जो है वो आपको आके कहता है कि तुम प्रिमिटिव हो, तुम्हें चेंज होना है, तुम्हें ये करना, वो करता है अमेरिका। वो कभी किसी चीज़ पे सैंक्शन लगा देता है, कभी किसी चीज़ पे सैंक्शन लगा देता है, वो प्रोग्राम्स फंड करता रहता है कल्चर को। वो उसने कॉन्स्टेंटली होता है जी मुसलमान सैवेजेस हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के लोग ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे मसाइल नहीं है, लेकिन हमारे मसाइल है ना, हम डिफाइन करेंगे। हमारी ख्वातीन बहुत अच्छा से नहीं रहती।
चाइना का यही बयान आया था, चाइना ने कहा था China has democracy, but it democracy is China styled. हमारी डेमोक्रेसी चाइना के स्टाइल की है। आपकी डेमोक्रेसी हमारी वेस्टर्न नहीं है। चाइना ने मुंह पे कहा था बाइडन की कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है, हमारी चाइना स्टाइल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारे पास भी है।
एग्जैक्टली
बट वो कल्चरली और रीजन वाइज डिफरेंट हो जाती है।
Exactly.
जबकि US की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो एक्सपोर्ट हो,
और हम जो चाहते हैं ना, मतलब वो उनके उनके जो अथॉरिटेरियन फिगर्स हैं जो उनके साथ हैं वो ओके हैं,
वो ओके हैं,
लेकिन जहां पर मसला होता है वहां डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाती है। तो मैंने वो देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ही इज नाउ गिविंग अ विजन फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वेयर ही इज सेइंग कि यार हम तुमसे बिजनेस के ताल्लुकात रखेंगे, हम भी कम्पीट करेंगे, तुम भी कम्पीट करो, हम तुम्हें तंग करना बंद कर देंगे।
ये दोनों बिल्कुल सिंक है, रूस और चाइना। ये नजर आता है कि वो एक ही फिलॉसफी है जो आपने कहा, ये शी जिनपिंग ने भी कहा है।
अच्छा अच्छा, मैंने उनका नहीं देखा,
उन्होंने यही बात, इस तरह की बातें, वो भी यही बातें।
तो ये कॉन्स्टेंटली दिमागों में, ग्लोबल साउथ के दिमागों में डाल रहे हैं।
हाँ, और वो ब्रिक्स के थ्रू, ब्रिक्स के अंदर जो बातें चलती हैं कि हमें एक शेयर्ड फ्यूचर
प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है,
शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, और हमें एक ऑल्टरनेट दुनिया को विजन देना है, नई करेंसी देनी है। वो ऑलरेडी दूसरी दुनिया बनने की चीज वो शुरू हो चुका है उसका प्रोसेस, और इसको यही दोनों पुश कर रहे हैं।
यूरोप को आप कहाँ जाता देख रहे हैं?
बहुत ही मज़े का सवाल किया है। अब यूरोप को आप देखें, यूरोप को अफ्रीका से तो काफ़ी हद तक निकाल दिया, यूरोप की जो कॉलोनियल पावर थी फ्रांस, उधर से उनको हिट पड़ी है।
राइट right.
ठीक है, यूके को आप देख लें, यूके के तो तरस आता है उनके उनके लीडरान को देख के, क्या था मैं क्या बन गया ये ये। और उनकी यूरोप की जो आपकी लीडर्स हैं वो भी उन पर भी पपेट होने का लगता है कि उन पर टैग लगता है। अब आपने पिछले दिनों अगर नोट किया हो ना, तो जो मैक्रॉन है फ्रांस के, वो गए हैं चाइना, और वो चाइना गए हैं और उन वो मैं एक पढ़ा था एक एनालिस्ट को, उन्होंने कहा कि वो चाइना से ये डील करने गए हैं अफ्रीका में कि अब चाइना का रोल बढ़ा है, अब चाइना अफ्रीका में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, US को पीछे छोड़ चुका है। तो उधर मैक्रॉन चाइना से बात करने गया है कि यार हमारा भी कोई रोल होगा कि नहीं।
तो कितना शिफ्ट है, कितना बड़ा शिफ्ट है।
और उसके साथ EU की प्रेसिडेंट भी थी जो कि बड़ी प्रो अमेरिकन बनती है ना, वो भी साथ गई थी, और वो थोड़ा सा गुड कॉप बैड कॉप भी खेल रहे थे चाइना के साथ। वो थोड़ी सी स्लाइटली अग्रेसिव, उनकी जरूरत नहीं होती वैसे चाइना के सामने, बट वो स्लाइटली मतलब स्ट्रेट फेस के साथ, और मैक्रॉन बड़े वो इस तरह ये वो कि आप हमें, हम आपके साथ चलेंगे हर डिफरेंट, आप हमें यूक्रेन में मदद करें, आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में मिडल ईस्ट में मदद, अफ्रीका में मदद करें। तो चाइना का इन्हें पता है, यूरोप को पता है कि चाइना इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर, और इकॉनमी में जिस तरह वो छा रहा है, वो अभी ये सिर्फ ये G7 का ही एक कबीला रह गया है, वो जो अमेरिका के कहने पे इनको लताड़ता है कि चाइना को लताड़ो, लेकिन अंदर खाते आप इनकी डील्स देख लें, यूरोप का सबसे, अफ्रीका के अलावा यूरोप का भी ट्रेडिंग पार्टनर 2019 में, अभी के फिगर्स का नहीं पता, बट 2019 में चाइना पीछे छोड़ चुका है अमेरिका को ईयू के साथ ट्रेड में.
अच्छा,
अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है यूरोपीय यूनियन के साथ चाइना. और ये यूरोपियंस को भी पता है कि राइज होगा चाइना का. और जो जो सूरत हाल बन रही है तो उसमें वो उनसे डील्स कर रहे हैं.
और उसमें वो लोग यही कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार नहीं नहीं अमेरिका कैसे, क्योंकि लोगों की इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन द थॉट प्रोसेस दैट यू ऑलवेज हैड. तो इंसानी फितरत ऐसी है कि वो डिनाई करती है, वो चेंज होता नहीं देखती. आपने जो वो बोला ना इसराइल का, कि हमने इसराइल की भी इनविंसिबिलिटी ख़त्म होते देखी है पिछले एक महीने के अंदर, राइट? एक इंसिडेंट होता है एंड दैट कम्प्लीटली चेंजेस द बैलेंस ऑफ पावर.
एक इंसिडेंट,
राइट?
एक इंसिडेंट की मार है सब.
हाँ, तो उसमें ये कहना कि जी अमेरिका ऑल इन ऑल है, अमेरिका जो है वही आगे लेकर जाएगा, पीपल नीड टू बिगिन टू सी अंडर द सर्फेस क्या हो रहा है. अमेरिका ने $10 trillion वॉर्स पे लगाए हैं, चाइना ने वो पैसा सारा अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाया है.
स्ट्रेटजी डिफरेंट है,
स्ट्रेटजी फर्क है सर, आप उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते. जब आप जो लोग गए ना चाइना, वो कहते हैं कि यार जब आप उनके शहरों में घूमते हैं, वो खान साहब गए थे इधर अमेरिका, तो उन्होंने भाई की थी कि यार ये अजीब मुल्क है, न्यूयॉर्क में जाना खड्डे हैं रोडों पे, अगर आपको याद हो.
बिल्कुल बिल्कुल,
राइट? वो आके एक बड़ी बात कर गए थे, जो कि उस टाइम पे लोगों ने कहा कि यार मस्करा मार कर आ गए, बट एक्चुअल मैं बड़े लोगों से मिला हूँ जो दोनों कंट्रीज गए हैं, वो कहते हैं यार वहाँ पर न्यूयॉर्क
में तो वो कहते हैं ऐसा लगता है लाहौर में फिर रहे हैं
लिटरली,
इतने खड्डे हैं वहाँ
सर. आप डाउन टाउन में सर्टन एरियाज में जाएं, वहाँ पे वो बार्स होते हैं, पिस की स्मेल आ रही होती है, ठीक है, आपको डेवलप्ड वर्ल्ड की सेंस नहीं आ रही होती. मैं एक जहाँ पे मैं रह रहा था वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, एलिवेटर था नहीं, आपको 8 फ्लोर्स ऊपर चल के जाना, एसी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं थी, ये सुपर पावर था, ठीक है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं थी, वो खिड़की को आधा खोल के ना एक डिस्पोर्टेबल एसी लगाया हुआ था ताकि थोड़ी शॉर्ट अच्छी खासी गर्मी हो जाती है वहाँ पर. तो मैं 2 मिनट के लिए ना मैं रुका जरूर, मैंने कहा यार हमने तो कोई और ही अमेरिका सोचा था.
बिल्कुल,
ये क्या अमेरिका है. और वो वाकई ही बात है कि आपने लोन ले आपने उठा के वॉर्स पे पैसा लगा दिया.
और दूसरा जो आप सैंक्शंस के थ्रू थ्रेटन करते हो, ये रशिया यूक्रेन जंग में जो सैंक्शंस इनके अपनी अगेंस्ट गई हैं, क्योंकि इसके बाद ये ज्यादा पुशबैक आया है कि हमें अपनी एक करेंसी, क्योंकि सारे डर गए हैं ना. इवन पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, अर्जेंटीना, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है नए, वो बड़ा बढ़ चढ़ के कहते हैं जी हमें
डॉलर से
हट रहे हैं. क्योंकि जब दुनिया ने देख लिया कि इन्होंने बैठे बिठाए उनके एसेट्स फ्रीज कर दिए जो डॉलर्स में थे, उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया है जो डॉलर्स के थ्रू करता है ट्रेड, और फिर आपने जी वो आप सैंक्शन लगा दी कि डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते. अब ये सारे फिर इनके पास क्या चारा रहेगा? फिर यही चारा रहेगा ना कि हम नई करेंसी की तरफ जाएं. और इसमें जो चाइनीज करेंसी है युआन, वो इसमें एक रोल प्ले कर रही है. अभी मैं देख रहा था कि वो ग्लोबल ट्रेड में दूसरे नंबर पर आ गई है, यूरो को पीछे छोड़ दिया है.
अच्छा, इंटरेस्टिंग.
पिछले हफ्ते की खबर है.
हाँ,
कि वो तेजी से एक्सेप्टेंस ग्लोबल जो रिजर्व्स हैं सेंट्रल बैंक्स में, उनमें चाइनीज करेंसी की अब कदर बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता. अभी उनका टोटल मार्केट शेयर आई थिंक 6% है.
अच्छा,
यूएस के डॉलर का 45% है, इतना मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा है.
राइट,
लेकिन वो चूंकि पीछे से एक चीज चली आ रही है ना,
तो वो स्पीड से बढ़ रही
है. एक्चुअल पावर ही वही है. पैसे वही ना, डॉलर की पावर. जिस दिन ये ऑल्टरनेट कोई चीज ले आए ब्रिक्स, जो ये एग्रेसिवली कोशिशें कर रहे हैं, तो फिर आप देखें
बिगिन टू चेंज,
हेजमोनी खत्म हो जाएगी यूएस की. आप देखें ना, तो फिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जो एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं उनके खिलाफ यूएस के साथ तक जा सकता है. जैसे ब्राजील के हैं.
बट मेरा क्वेश्चन ये आता है, देखें लिबिया ने यही बात बोली थी, पीपल डोंट नो व्हाई दे वेंट टू लिबिया. लिबिया वांटेड कि हम अफ्रीकन यूनियन बनाए. गद्दाफी ने बेसिकली तो स्टेटमेंट्स ये दी थी, उन्होंने कहा अफ्रीकन यूनियन बनाए और जो हमारा तेल की एक्सपोर्ट्स हैं वो हम डॉलर से हटा के हम अपने दिनार में करेंगे.
एक अफ्रीकन यूनियन अभी भी है, बट वो पपेट है.
वो पपेट है. तो आपने जाके उसको फुड़का दिया. सद्दाम हुसैन ने भी ऐसी बातें बोली, आपने उसको फुड़का दिया. भुट्टो और पेशा फैसल और गद्दाफी ने OIC बनाई, उस टाइम भी उन्होंने यही बातें बोली. इवेंचुअली उनके क्या आउटकम्स हुए आपके सामने.
बिल्कुल,
इस बार ये बातें अब तो ये सुबह शाम हो रही हैं.
हाँ,
इस बार कोई रिएक्शन उस तरह से आ नहीं पा रहा. सो मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज डेफिनेटली अ शिफ्ट इन द पावर एज वी हिस्टोरिकली सीन.
हाँ,
इतना आसान नहीं है कि आपने बोला ही और सडनली जी वो एक अमेरिका अग्रेसिव आके आपको पड़ गया.
अब तो वो बोलते रहते हैं.
हाँ,
अब तो आप देखें इवन सऊदीज, चलो खुल के पैलेस्टीनियंस को नहीं कर पाते सपोर्ट, लेकिन सऊदीज की जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने काफ़ी हद तक आज़ाद कर ली है.
हाँ,
वो US कहता रहता है उन्हें कि जी क्रूड ऑयल वो जो कर उसको सप्लाईज में इजाफा करो.
हाँ,
वो कट्स लगा रहे हैं
हाँ.
रूस के साथ मिलके, रूस के साथ हाथ मिला के वो कट्स लगा रहे हैं. तो यहाँ से पता लगता है कि वो यूएस की जो पावर है वो रही नहीं है ना. उनका सऊदीज उनकी बात सुनते हैं हाँ. सऊदीज ईरानियन से हाथ मिला लेते हैं. चाइना मिडल ईस्ट में एंटर हो रहा है, नई करेंसी की बातें हो रही हैं
हाँ.
फिर वो एक्सेप्टेंस जो चाइनीज करेंसी की. और जब टर्निंग पॉइंट वही होना है कि जिस दिन ब्रिक्स ने वो कोई अनाउंस कर दी
हाँ.
तो फिर वो सैंक्शंस की क्या कदर रहेगी
हाँ.
बेसिकली वो डॉलर लिंक्ड है ना सैंक्शंस से
हाँ.
कि हम वहाँ पे
अगर आपने सिस्टम ही बाईपास कर दिया,
बाईपास कर दिया. और ईरान ने दुनिया को ये दिखाया कि हम सैंक्शंस के बगैर रह सकते
हैं,
बहुत इज्जत के साथ रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं. और अब ईरान ने सर्वाइव किया 30 साल सैंक्शन. अब वो अब ना चढ़ा है, अब अमेरिका पे अब उसका टाइम है. वो अमेरिका को चपेड़े लगा रहा है
हाँ.
कि मैंने सर्वाइव किया, अब मैं
इमेजिन कर रहे हैं ईरान चपेड़े लगा रहा है, ये क्या
लगा रहा है एक सैंक्शन ज्यादा मुल्क चपेड़े लगा रहा है. वो उसके खिलाफ एक नया महाज बना रहा है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ब्रिक्स में वो अग्रेसिव है ईरान
हाँ.
इधर सीरिया में वो अग्रेसिव है, फलस्तीन के इशू में वो अग्रेसिव है
हाँ.
रूस के, रूस को वो ड्रोन्स दे रहा है
हाँ.
तो वो बढ़ बढ़ के चपेड़े ही लगा रहा है ना
हाँ.
तो उसने सस्टेन कर ली हैं सैंक्शंस
राइट.
तो अब वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को किसी पे सैंक्शंस भी ना लग सकें
हुँ.
जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हाँ. होगी कि ठीक है 50% ऑफ द वर्ल्ड ये है, ये सैंक्शन आप पे असरअंदाज कर सकती है, ठीक है मैं इस सिस्टम से निकल के.
अमेरिका चीखता रहे, उसको कोई सुने ना सुने, वो फिर लोगों के ऊपर है.
और ये मुझे एक उम्मीद है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, जो आप कह रहे हैं ना दो थॉट प्रोसेस हैं, दोनों को ये जरूर पता है, दोनों नए सिस्टम के हामी जरूर हैं
हाँ.
कि वो हमारे पास नई ऑप्शन होगी ना तो थोड़ी जान छुटे
हाँ. मुझे पर्सनली देखें इसी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा, मैंने स्टार्ट में ये बात बोली कि देखें दो थॉट प्रोसेसेस हैं. मैं अच्छा बुरा मैं इस वजह से नहीं कह रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार जो भी लोग हैं अपने हिसाब से दिमाग में वो तो यही चाह रहे ना, अच्छा हो,
अच्छा हो,
मुल्क के लिए बेहतर हो.
बिल्कुल
आप उस पॉलिसी से अग्री या डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि आपका एक एनालिसिस हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उनको वो नहीं कर सकते कि यार ये तो बिल्कुल जालिम जाबर लोग हैं जो कि जो है ना बस आपको तबाह करने आए हैं. सो वही वाली बात है कि As the reality of the global system changes, तो वो realignment भी within that space मेरा ख्याल है आ जाएगी.
आ जाएगी और करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पीछे रह जाओगे.
पीछे रह जाओगे.
फिर आप दो तीन लीडर्स के साथ वो फिर वही होगा जो आपका वो, आपको उन्होंने लिफ्ट वैसे भी नहीं करानी
हाँ.
आप जितना मर्जी चले जाएं
हाँ.
आप यू आर नॉट अ गोरा, यू आर नॉट G7
yeah.
आप पाकिस्तान हो
हाँ.
तो आपको अल्टीमेटली रीजन के साथ ही अलाइन करना पड़ेगा
हाँ. और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हाँ. थी. आई मीन आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. आज अगर हमारी उस पुरानी एस्टेब्लिशमेंट होती तो शायद इसराइल के और पैलेस्टाइन के मामले में हम बहुत डिफरेंटली प्ले कर रहे होते
yes.
हम बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत
शायद होता
क्लियर होते सामने.
अभी तो हमारा है ही नहीं इस टाइम. आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या है, उनकी
इररिलेवेंट है,
इररिलेवेंट,
क्लोज टू इररिलेवेंट
हाँ. आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड एक इलेक्टेड बंदे से बात करना पसंद करती है
हाँ.
ना कि एक सिलेक्टेड बंदे से
हाँ.
जो ना कि केयर टेकर से. केयर टेकर कौन होता है डिसीजन, वो यूरोपियंस भी देख रहे हैं
हाँ.
बेशक वो इस करंट रिजीम के साथ हों लेकिन उन्हें भी पता है इनकी कोई वो नहीं है, इनकी क्या वो होगी इससे. उनको भी पता है कि इज्जत इलेक्टेड लीडर की होती है जो कि पीछे से अवाम का मैंडेट लेके आता है, बात करता है धड़ल्ले से
हाँ.
वो डिसीजन ले भी सकता है
हाँ.
काकड़ साहब नहीं कोई डिसीजन ले सकता
हाँ. काकड़ साहब आई एम श्योर इज अ वेरी नाइस गाय, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑन द पॉडकास्ट एज वेल, बट द फैक्ट इज आई फाइंड इट क्वाइट ऑड कि वो यू नो ही इज गोइंग टू लम्स, ही इज स्पीकिंग टू पीपल, ही इज ट्राइंग टू हैव अ.
ये तो इलेक्टेड लोगों के काम है,
ये इलेक्टेड लोगों के काम है सर. आपका काम इलेक्शन कराना था,
इलेक्शन कराना है या जो छोटी मोटी चीजें हैं सिस्टम में वो उसको रेगुलेट करें, फ्लो में लाएं
हाँ.
आपका काम ही नहीं है पब्लिक से.
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोग जो हैं वो अपने मैंडेट हाँ. को क्यों नहीं समझ पा रहे. ये अच्छे लोग हैं, उमर सैफ साहब अच्छे आदमी
हाँ,
हैं
हाँ.
पर वो आके कैसे कह रहे हैं कि हम आईटी में रेवोल्यूशन लाएंगे. सर आप 3 महीने के लिए आए हैं, यू नो आपका काम है कि आप इस वक्त जो है ना इलेक्शंस कराएं. केयर टेकर का मैंडेट बना था कॉन्स्टिट्यूशन में टू गेट इलेक्शंस
डन.
सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. आई होप पीपल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. आई डोंट, आई एम नॉट फॉलोइंग इट आई गेस. बट थोड़ा सा मैं इसको लपेटता हूँ, 1 hour 11 minute मार्क हो गया क्योंकि हमने बहुत सारी डिफरेंट बातें की हैं. तो आई थिंक जो समराइज अगर मैं करूँ तो हम इस नतीजे में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के एक लार्जली एक जो चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि देर इज़ अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर.
यस,
एक शिफ्ट आ रहा है दुनिया
में,
और उस शिफ्ट के अंदर एक पुराना निज़ाम है, एक नया निज़ाम है, और उसी उन दोनों निज़ामों की अकासी करती हैं डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेस,
डिफरेंट पीपल,
डिफरेंट पीपल. और जब वो शिफ्ट आता है तो उसमें हमेशा आपको एग्रेशन बढ़ती हुई नजर आती है, आपको एक लड़ाई होती है ना उनके पुराना.
नहीं में आप एंटर हो रहे होते हो तो वो हलचल तो मचती है,
हलचल तो मचती है. और वो हलचल हम इस वक्त देख रहे हैं, और वो बहुत क्विक नहीं होती, वो जनरली टेक्स 3-6 years फॉर द ट्रांजिशन टू फुली हैपन. बट एज दैट ट्रांजिशन इज हैपनिंग, इट कैन बिगिन टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल, एंड इट कैन बिगिन टू प्रिडिक्ट a lot of what might happen in Pakistan as well.
वैसे ही बहुत सी चीज़ें अगर आप डीपली एनालाइज करें तो
आपको नजर आ जाएगा. जिहाद भाई, मैं इसको थोड़ा सा रैप करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. आई नो आप बेचारे 9 बजे आप घर आए हैं और आपने वक्त निकाला. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
बड़ा आप किससे मिलना था हमेशा ही एक,
इट्स ऑलवेज अ प्लेजर,
इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. मजा आता है, बहुत मजा आता है हमारी डिस्कशन का.
बड़े कम लोग मिलते हैं ऐसे.
लास्ट टाइम हम मिले थे तो सारी रात हम बैठे रहते थे, गपशप करते रहते थे.
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. थैंक यू सो मच कमिंग इन. एंड मैं एक चीज बहुत ज्यादा कहूंगा, क्योंकि मैं बड़ा आई बिन अ लॉन्ग टर्म सपोर्टर ऑफ वैल्यू एडेड कॉन्टेंट इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री. नॉट टू से दैट द पीपल हु डू एंटरटेनमेंट एंड ऑल ऑफ दैट आर बैड, उनका अपना एक रोल है, वो काम कर रहे हैं. लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इस पर्टिकुलर एरिया में हूँ, कि बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को पढ़ा लिखा काम करके व्यूज़ के पीछे ना भाग के क्वालिटी प्रोवाइड करना. तो मैं हो सकता है मैंने लास्ट टाइम भी बोला हूँ, मैं हर दफ़ा बोलूँगा थैंक यू फॉर योर सर्विस, क्योंकि लोगों को सिखाना, समझाना, उनको शऊर देने से ज़्यादा मुझे लगता है नोबल कोई काम नहीं है. सो थैंक यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस.
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज.
फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपके एपिसोड पसंद आए आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब लाइक करते पाएंगे, लोगों तक माई कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी, और ये प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब करते पाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं हमने जितनी सारी बातें की उसके बारे में, व्हाट आर योर थॉट्स, किसी चीज़ से आप एग्री या डिसएग्री करते हैं तो प्यार मोहब्बत से आके बता दें. कोई ये हमने कोई फैक्ट्स, मतलब बैक्ड बाय फैक्ट्स है, बट एनालिसिस है, एनालिसिस कैन चेंज, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज. यू नो, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट वी आर सीइंग.
ये हम दो दोस्तों की डिस्कशन,
की एक डिस्कशन है.
इसमें अगर आप कुछ है कोई डिसएग्रीमेंट तो बताइए,
तो हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं. आई विल बी हैप्पी टू चेंज माय ओपिनियन. बाकी अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई इंसान बुरा नहीं है दुनिया में. लोग अपने अपने हिसाब से बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी वो चीजें कर रहे हैं. आई होप एंड विश के जो जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो अपनी मेहनत के अंदर,
और आपको भी अल्लाह कामयाब करे जो आप प्रोजेक्ट्स लेके चल रहे हैं.
थैंक यू सर.
आप पाकिस्तान से बाहर गए हैं,
बिल्कुल ऐसा ही,
यूएई में आपने शुरू किया अपना, अल्लाह आपको भी कामयाब करे.
आमीन आमीन. थैंक यू सो मच सर.
थैंक यू.
बट एनीवेज, सोसाइटी मुजम्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.